तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महाबदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलंबितभुजौ कनकाबदात्तौ संकीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां नित्यं श्रीचैतन्यचरितामृतम्।
हरे कृष्ण। आज इस पवित्र वेला में सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आज की ये तिथि आज का ये दिन प्रातः काल से लेकर संध्या पर्यंत भक्ति भाव से व्यतीत हो। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लिए आज का दिन परम पुनीत दिन है। श्री फागुन पूर्णमासी और आज के शाम को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था और इस बात की पुष्टि कविराज गोस्वामी अपने रचित श्री चैतन्य चरितामृत में करते हैं। इन्होंने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु की वंदना नहीं की। चैतन्य महाप्रभु जिस तिथि को आविर्भूत होते हैं उस तिथि का वंदन करते हैं। जब भगवान के साथ कोई तिथि कोई वस्तु कोई स्थान जुड़ जाता है वो अपने आप में महिमा मंडित होता है। एक तो जो ग्रंथ उन्होंने लिखी है जिस ग्रंथ की उन्होंने रचना करी इस ग्रंथ की विलक्षणता यही है कि कविराज गोस्वामी जिस समय लिख रहे थे उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। विथ ए ब्लाइंड आई ही कंपोज दिस ग्रंथ। उन्होंने स्वयं कबूल किया है, स्वीकार किया है। आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कांपए कर मने किछु स्मरण न होय ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे तबु लिखी ए बड़ विस्मय। कविराज गोस्वामी अपनी रचना पर स्वयं विस्मित होते हैं। आमी वृद्ध जरातुर, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। वृद्धावस्था को जरा कहते हैं। जरा किस लिए कहते हैं? वाय वृद्धावस्था इज कॉल्ड जरा, जरावस्था, जराग्रस्त शरीरम। जरा हिंदी शब्द में, हिंदी शब्दकोश में जरा शब्द का अर्थ होता है जरा जरा सी रह जाए, थोड़ा थोड़ा सा। अभी खूब खा रहे हो, जरा जरठपन आएगा, एक चपाती नहीं खा पाओगे, बड़ी मुश्किल से एक चपाती खा पाओगे। खाना तो छोड़िए, एक ग्लास शरबत भी नहीं पी पाओगे। अभी खूब दर्शन करने जा रहे हो, यहां जाना वहां जाना वहां जाना वहां जाना, बुढ़ापा जब आएगा तो कहोगे वहां कौन बैठा है, कौन है? वो आपका बेटा परिचय करा देगा, पिताजी ये तो आपकी बहू है। इस तरह से जरा जरा सी बात रह जाए, ना कान को सुनाई पड़ता है, ना नेत्र को दिखाई पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। कितनी भयंकर स्थिति यह है। ना देखिए नयने, ना सुनिए श्रवणे, तबु लिखी एबड़ विस्मय, परंतु मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं। श्री राधा कुंड इस लेखन का साक्षी है। राधा कुंड के तट पर इस अमर ग्रंथ की रचना कविराज गोस्वामी ने की थी। चैतन्य चरितामृत इसका नाम है, श्री चैतन्य चरितामृत, चेतना का अमर प्रवाह। चेतना, प्रभु पाजी ने चैतन्य चरितामृत का अर्थ क्या है? चैतन्य माने चेतना और अमृत माने अमर। यह चेतना का एक अमर प्रवाह, अर्थात चैतन्य महाप्रभु से जो जुड़ जाएगा उसकी चेतना कभी विलुप्त नहीं होगी। प्रलय काल में भी उसकी कॉन्शसनेस कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा चैतन्य चरितामृत। नाम भी विलक्षण है और लेखक भी विलक्षण है। लिखिते कांपे कर, आपको लिखना है, आप लिखना चाहोगे, आपकी उंगली फिक्स होनी चाहिए, आपकी उंगली पे लेखनी आनी चाहिए। जैसे ये लेखनी है, हम इसको पकड़ते हैं, यदि मैं नहीं पकड़ पाऊंगा तो इससे लिखना मुश्किल है। यदि हमको ऐसे 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 पकड़ने में ऐसे ऐसे होगा, उंगली कांपेगी, तो हाउ कैन आई राइट। लिखिते कांपे कर, कांपे माने मेरी उंगलियां वो थर्रा रहती, कांपती थी, ना आंखों को दिखाई पड़ता था, ना कान को सुनाई पड़ता था, तबू लिखी, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये विस्मय की बात है। क्यों विस्मय की बात है? क्योंकि जो असंभव है वो हरि कृपा से संभव होता है। और ये चैतन्य चरितामृत श्री मदन गोपाल, श्री मदन मोहन जी के कृपा का ये परिणाम है। श्री चैतन्य चरितामृत ये कविराज गोस्वामी का वे मनोकल्पित ग्रंथ नहीं है, ये कोई मनोकल्पित लेखक का काव्यिक चातुर्य नहीं है, ये मदन गोपाल के साक्षात कृपा का ये फल है, ये प्रेम फल है चैतन्य चरितामृत। इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहा श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, सुनते रहना। बोले कब तक सुनते रहेंगे? बोले मरण पर्यंत। बोले मरने के बाद नहीं सुनेंगे ना, फिर जन्म लोगे, फिर सुनते रहना। बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, बोले ना मोक्ष पर्यंतम नहीं। बोले सुनते रहना, कब तक सुनते रहना ये मत पूछो, सुनते रहना। श्रूयतम श्रूयतम नित्यम, जीवन नित्य है, चैतन्य महाप्रभु नित्य है, उनकी लीला भी नित्य है, इसलिए नित्य कथा को नित्य श्रवण के द्वारा नित्य सुननी चाहिए। श्रूयतम श्रूयतम नित्यम, चिंतितम चिंतितम मुदा, और इस चैतन्य लीला का चिंतन करो, किस विचित्र प्रभाव में किस विचित्र समय भगवान का प्राकट्य होता है। चिंतितम और गीयताम गीयताम, सदैव गान करो, श्री चैतन्य चरितामृतम मेरे साथ ये पद को गाइए। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम नित्यम, श्री चैतन्य चरितामृतम। भाग्यशाली व्यक्ति इस ग्रंथ का नित्य नियमित चिंतन करता है, इसका श्रवण करता है। हम लोग भाग्यशाली हैं, श्री वृंदावन धाम में यमुना के तट पर इस पावन तिथि में हम सभी महाप्रभु का ये रस आस्वादन करने हैं तो यहां विराजमान हुए हैं। परम पूज्य श्रीपाद श्री प्रबोधानंद स्वामी महाराज जी ने प्रातःकालीन कथा में आप लोगों को सुनाया था, क्या सुनाया, जन्म लीला। जन्म हुए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, कहां प्राकट्य हुआ, नदिया में प्राकट्य हुआ। यहां से नदिया कितना दूर है, 3000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, इतना नहीं होगा, काहे को 3000 होगा, 1400 मास देखो कह दे 1400, 1500 किलोमीटर। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, कब प्राकट्य हुआ, आज से कितने वर्ष पहले, हाँ, 535 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। पिता का नाम क्या था और माता का नाम और स्वयं उनका नाम, हाँ, क्या था, विश्वंभर मिश्रा। उनके पिता का नाम था पुरंदर मिश्रा, माता का नाम था सची देवी, पता था नदिया नवद्वीप, और स्वयं अपना नाम था विश्वंभर मिश्रा, और बड़े भाई का नाम था विश्वरूप मिश्रा। मिश्र परिवार में जन्म हुआ था, ये थे उड़ीसा के, पर ट्रांसफर होकर के वहां चले गए थे बंगाल। जो भी हो, इतने पुरानी चीज को जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। मिश्र परिवार में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, विलक्षण है। माता की 8-8 कन्याओं का देहांत हो गया, विश्वरूप का प्राकट्य हुआ। तत्पश्चात जैसे नंद बाबा का, भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा को प्राप्ति बहुत ही लेट एज में हुई थी, ऐसे सची माता को चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति भी बहुत ही विलंब काल में हुई थी, है ना, बहुत विलंब काल में, लगभग मैं सोचता हूं 35-40 वर्ष तो हो ही जाएगा सची माता को, उससे कम में नहीं होगा। 8-8 लड़कियां हुई, फिर वो विश्वरूप हुए, बहुत ही लंबा समय महाप्रभु के आने का लग गया। वो भी आए, वो भी मातृ गर्भ में 14 महीनों तक रहे, 14 मंथ्स। ईश्वर का सब कुछ विलक्षण है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पुरंदर मिश्र के हृदय में एक दिव्य ज्योतिर्मय पिंड का प्रविष्ट होता है। सपना देखा पुरंदर मिश्र ने, सची मैंने एक अद्भुत सपना देखा। सची ने कहा क्या देखा, एक ज्योतिर्मय एक प्रकाश मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ है और मेरे हृदय होकर तुम्हारे हृदय पे गया। हमें तो कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है, कोई महापुरुष लगता है कि आने वाला है। सची ने कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो दोनों इस प्रकार भावना में मगन हो गए और सचमुच माता सची का गर्भ रहा। माघ के महीने में, माघ बीत जाता है, फागुन आता है, एक बरस बीतता है, दूसरा फागुन का अंतिम समय आता है। उनके पिताजी, सची माता के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती बड़े ज्योतिषाचार्य थे। ज्योतिषाचार्य उनको ज्योतिष कहते हैं, जिनसे ज्योति आती है, प्रकाश आता है। ये आकाश में, ये अंतरिक्ष में जो आप ग्रह मंडल दिख रहे हैं, तारामंडल, इनको ज्योतिष कहते हैं। और इन ज्योति पर जो गणना करते हैं, जो विद्या साधते हैं, उनको ज्योतिषाचार्य कहते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती एक बहुत धुरंधर ज्योतिषाचार्य थे तत्कालीन समय के। उन्होंने गणना की और गणना करके कह दिया मेरी बेटी का एक सुंदर दिव्य पुत्र का जन्म होगा और इसी फाल्गुन पूर्णमासी को हुई होगा। ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। हमें कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आप ज्योतिष विद्या मानते हो? क्यों नहीं मानेंगे, भागवत का अध्ययन करते हैं, मानना पड़ेगा। ज्योतिषाम अयनम साक्षात गर्गाचार्य ज्योतिष विद्या के प्रणयन करता थे। इसलिए ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, पर आज काल के गणनाकार गलत है, उनको आता नहीं। आप लेके जाते हो जन्म पत्री बनाने के लिए, सही सही बनाने वाला सही सही बता देगा। अब बालक का जन्म ही नहीं हुआ, नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा चिंता मत करो जगन्नाथ मिश्र, तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र का आगमन होगा, अभी जन्म नहीं हुआ, मात्र गर्भ में है, ज्योतिषाचार्य कहते हैं होने वाला है। इसलिए जन्म पत्री ये बिल्कुल सटीक है, यदि कोई सटीक व्यक्ति बनाता है। विधि ने जब लिख दे छठ रात के अंक, रुई घटे ना तिल बढ़े रहो रे जीवन शंक। गर्गाचार्य ने जब जन्म पत्री बनाई भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने कहा महाराज नंद तुम्हारा ये पुत्र अनेक विवाह करेगा। नंद महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले कितनी बहुएं आएंगी? बोले गिनती मत करो, बहुत आएंगी, 16108 आने वाली है, खूब लड़की, खूब बहुएं आएंगी। और तुम्हारा ये बेटा महापराक्रमी होगा, इनके सामने कोई शत्रु खड़ा ही नहीं हो सकता, भविष्यवाणी कर दी थी। परीक्षित महाराज जी का जन्म संस्कार हुआ, उसी समय उन्होंने मरण के लिए भविष्यवाणी कर दी थी, महाराज युधिष्ठिर आपका यह पुत्र जब 60 वर्ष आयु का होगा तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु होगी, भविष्यवाणी हुई थी। हम सबकी भविष्यवाणी है, हमको पता नहीं है। आप लोग दक्षिण भारत से कुछ लोग हो, इधर दक्षिण भारत के कोई नहीं है, उत्तर भारत के सब हो। अब जब मान लीजिए तमिलनाडु जाओगे, कहीं से कहीं के लिए बस करोगे, उस बस के ऊपर कुछ लिखा रहता है तमिल भाषा में, वो ऐसे मुड़ा 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 होकर लिखा रहता है, आप पढ़ोगे क्या लिखा होता है कुछ भी पता नहीं चलता। पर इसका अर्थ नहीं है कि वो लिखा गलत है, वो सही लिखा हुआ है, पर आपको पढ़ना नहीं आता। इसी प्रकार ये ललाट में, ये हथेली में, ये छाती में, ये कंधों में सारा कुछ लिख दिया है विधि ने, पर हमको पढ़ना नहीं आता। जिनको पढ़ना आता है वो जान लेता है। नीलांबर चक्रवर्ती ने पढ़ लिया, सब कुछ बताया, ये सामान्य पुत्र नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। भगवान बुद्ध की जन्म पत्री बनी थी, यही भविष्यवाणी हुई थी, या तो सन्यासी होगा या तो राज चक्रवर्ती होगा। भगवान कृष्ण की जन्म पत्री बनी, वृष लग्न सिंह राशि, कोई इनका सामना नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज जी का और श्री चैतन्य महाप्रभु का बन रहा है, बड़े भाग प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए, क्यों आना पड़ा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, किस लिए? आप सभी जानते हो भगवान का कोई भी कार्य बिना उद्देश्य होता नहीं। एक न्याय शास्त्र में कहावत है कि बिना प्रयोजन का मंदोपीना प्रवर्ते, मंद व्यक्ति भी मूर्ख व्यक्ति भी बिना काम का बिना उद्देश्य का कोई कुछ नहीं करता बिना प्रयोजन का। भगवान वो तो वेदज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, उनको क्यों आना होता है? किस लिए आए चैतन्य महाप्रभु? क्या क्या कारण था? प्रेम देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं दिया। श्री सनातन गोस्वामी ने लिखा है कृष्णात अन्य को वा प्रेम दो भवित, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन प्रेम दे सकता है? चैतन्य महाप्रभु से मिलना कठिन है। ब्राह्मण थे, कोई इतर जाति के घर पे खाते नहीं थे। आप उनको बुलाना चाहे, मान लीजिए आपका जन्म उस समय होता, आप कहते आओ मेरे घर में भोजन करो, ना ब्राह्मण के अतिरिक्त हम कहीं नहीं भोजन करेंगे। राम के पास जाते, राम के पास जा ही नहीं सकते थे कि सिक्योरिटी बहुत है, पहरेदार बहुत है, राजपुत्र थे ये, ब्राह्मण पुत्र थे, पर हमारे कन्हैया वो तो ग्वाला थे। ग्वालों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती। वृंदावन के ऐसे गोचारण भूमि पर चढ़ते रहो, कभी ना कभी श्री कृष्ण तुम्हें गलवाही देने आ जाएंगे। ये संभव है। किसी गोचारण करने वाले लड़के, उनसे मिलना बहुत आसान है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कृष्णात अन्य कोवा प्रेम दो भवेत, लता स्वपी, लता पता को दे दिया भगवान ने ऐसा प्रेम दिया, आज भी वृंदावन के वृक्ष झुके हुए हैं। एक कहावत है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जाकर के देख लो इन पेड़ों को झुके हुए हैं, किसने प्रेम दिया, किसने प्रेम दिया? कृष्ण ने प्रेम दिया। प्रेम प्रदाता तो कृष्ण ही है। भेलिनियों को प्रेम दिया, ग्वाल वालों को प्रेम दिया। हाँ, हम भोजन की बात कर रहे थे, महाप्रभु किसी के घर में नहीं भोजन करते थे, पर भगवान कृष्ण हाथ में दही भात लेकर के चलते थे। मधुमंगल उनके बाल मित्र आते थे, कन्हैया दिखाओ कितना टेस्ट है, वो खा जाते थे, और उसी झूठन को भगवान श्री कृष्ण खाते थे, उसी झूठन को खाते थे। इसको देखकर के देवताओं को मोह हुआ, देवताओं के देव ब्रह्मा को मोह हुआ। मिसति बभुजे यज्ञ वक्पाल के लिए ही, यज्ञ के ऋचाओं के साथ जिन्हें हवन किया जाता है, नैवेद्य निवेदन किया जाता है, वो सर्वाराध्य सर्वज्ञान अनंत विभु चिन्मय सत्ता वो बच्चों की झूठन खाता है। बिभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलौ तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये सपरिसृहद यज्ञ भुक बालकेली। इस प्रकार से यज्ञ में भोजन करने वाले जो यज्ञ हैं वो बाल मित्रों के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कृष्ण तो प्रेम देते, परंतु कृष्ण का प्रेम मनुष्यों के, सभी मनुष्यों के लिए, सारे क्षेत्र के लिए संभव नहीं था। ब्रज में रहे, प्रेम देने आए, लेकिन अपने को भगवान के रूप में प्रचार किया। मत्तः परम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, तीन चार बार तो विश्व रूप दिखा दिया, मां यशोदा को दो बार दिखाया है ना, गीता में अर्जुन को दिखाया, और उस युधिष्ठिर वो धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन को दिखाया। कितने बार दिखाए विश्व रूप? चार पांच बार दिखा दिए। उनको भक्त के रूप में कौन मानेगा? साक्षात भगवान है। मत्तः परम तरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं भगवान हूं, है कोई मेरा सामना करने वाला, है कोई मुझे चुनौती देने वाला? नोबडी, कोई चुनौती देने तो एक व्यक्ति आया था, क्या नाम था उसका? पौंड्रक। अरे तू कौन वासुदेव है? तू नकली, मैं असली हूं।
पता नहीं कहां से पढ़ करके आया था, नकली नकली कोई वो पंख वंख लगा दिया, एक गरुड़ उसने बना रखा था उड़ने वाला, कोई मोटर फोटर फिट कर दिया था, जैसे आजकल कैमरा उड़ाते हैं है? ड्रोन, हाँ ड्रोन उड़ाते हैं, वो वही कोई फिट कर रखा था, और दो चार लकड़ी के दो भुजा भी बना रखा था, उसमें कमल और शंख चक्र ऐसे बैटरी वाला जो घूमने वाला चक्र बना रखा था, और भगवान को चुनौती दे रहा था। भगवान ने पत्र पढ़ा, दूत लेकर आया, मैं काशी नरेश का मित्र पौंड्रक तुम्हें चुनौती देता हूं, आओ कल रणभूमि में दो दो हाथ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने खूब हंसा, हे मित्र तुमने खूब हंसाया हमें, तो ठीक है। दूतों के उसी दूत के हाथ में उन्होंने पत्र भेजा, हाँ बोलो जाओ, बोलो जब रणांगन में आओगे ना, तुम्हारे पितरों को श्राद्ध दे करके आना, फिर यहां से कल तुम वापिस नहीं जाओगे। तो आप लोग जानते हो भगवान ने चक्र छोड़ा और वहीं पर उनका काम तमाम हो गया। सो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अपने विभूता, अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य, अपने विभूता, अपना सर्व सामर्थ्य प्रदर्शन करने के लिए आए। पर भगवान राम ने ऐसा नहीं किया था, वो तो एक नर बन करके आए, नर रूप में तीनों आए, श्री चैतन्य आए, श्री श्याम आए, श्री राम आए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? भगवान श्री कृष्ण आए, मैं भक्ति का प्रचार करूंगा, भक्ति दूंगा, प्रेम दूंगा, लेकिन भगवत्ता से ना बहुत कुछ ढक जाता था। केवल ब्रजवासियों के अतिरिक्त बाकी सभी लोग भगवान को भगवान मानते थे, यहां तक कि देवकी वसुदेव भी नहीं मानते थे, कैसे करें? तब भगवान ने सोचा कि ये प्रेम को मैं सर्वत्र कैसे प्रचार करूंगा, कैसे प्रचार होगा सर्वत्र? झारखंड तो हम नहीं गए, छत्तीसगढ़ तो हम नहीं गए, दक्षिण भारत तो नहीं गए, कैसे प्रचार होगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चारी भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन, ये भक्ति देने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। और उस समय भी जो पाखंडवाद, जो दंभवाद, जो जो सब था, उसका महाप्रभु ने शास्त्रीय तर्क के आधार पर विनाश किया। एक आध जगह में उन्होंने अपना ईश्वरपन दिखाया, पर बहुत सर्वत्र नहीं दिखाया, सर्वत्र विनम्रता और भगवान के दो भाव, भक्त भाव में आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में भक्तों हमको बहुत अधिक लाभ मिलेगा यदि महाप्रभु का हम भक्त भाव पक्ष को लेते हैं। भगवान का भाव सही है, आप भगवान का भाव लोगे बहुत कुछ दिक्कत है, भक्त भाव पक्ष लेना ज्यादा अच्छा है। और उड़ीसा के महाराज थे जिनका नाम था गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो इसके सख्त खिलाफ थे, वो कहते थे महाप्रभु भक्त भाव में आए, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग। आप लोगों ने कई लोग सुने होंगे, वो कहते थे व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग, वो तुलसी उलसी नहीं चढ़ाते थे। और सचमुच चैतन्य चरितामृत में कई बार, चैतन्य भागवत में कई बार भक्त भाव में अंगीकार करके भक्त भाव में आए हैं, भक्त के रूप में। देखो राम जी के तीन भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, क्या ये भगवान नहीं थे? ये भगवान थे कि नहीं थे? हां या ना बताओ, ऊपर हाथ करो। हाँ, ये राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भरत सदा सोचते थे मैं भाई हूं, मैं उनका सेवक हूं, वो नहीं भगवान सोचते थे। भगवान सोचते तो सारी गड़बड़ हो जाती, बहुत भयंकर गड़बड़ हो जाती। जब राम ने उन्हें वचन दिया था मैं आऊंगा, तो एक दिन बाकी था, क्या भरत का भाव था? रहे वो एक दिने अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। लगता है भगवान ने मुझे कपटी माना, मुझे धोखेबाज माना, मेरी मां के वजह से प्रभु को वनवास मिला, लक्ष्मण के प्रति उनका प्रेम है, इसलिए उनको संग लेके गए, मुझे संग नहीं लिए। भरत रोते 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 बिलखते उनका समय बीत जाता था। सोचिए यदि भगवान का भाव उनमें आता, रोते चिल्लाते नहीं, चिल्लाते। चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में आए, उनका भक्त भाव का पक्ष सुनने योग्य और देखने योग्य है, अनुकरण अनुसरण करने योग्य है, भक्त भाव का पक्ष है। महाप्रभु भक्त के रूप में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कतिपय जगहों में उन्होंने अपने भगवत्ता का प्रदर्शन किया था, पर अधिकतर अधिक समय वो अपने भक्त भाव में बिताया। कैसे भक्त हुआ जाता है? सो भगवान कृष्ण के मन में यही इच्छा रही, वो भक्त कैसे हुआ जाता है? भक्त होकर के भगवान के विरह में पूरा जीवन बिता देता है, फिर भी शिकायत नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? 100 साल तक राधा रानी रोती रह गई, एक दिन भी शिकायत नहीं करी। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं के शब्दों में गाया, श्री राधा रानी के शब्दों में। हमारे शिक्षाष्टक में हम रोज प्रातःकाल पाठ करते हैं, आश्लेष्य वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनात् मर्माहतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत् प्राणनाथस्तु स एव नापरः। इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? व्यवहारिक अर्थ आप सबको पता है, मेरे प्राणनाथ कृष्ण मेरा आलिंगन करे या मुझे पैरों से ठुकरा दे, फिर भी मेरे प्राणनाथ है। आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टुमा अदर्शनात् करो, अदर्शनात् मर्माहतम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। भगवान कृष्ण के लिए राधा रानी लंपट शब्द प्रयोग करती है, क्यों करती है? भगवान श्री कृष्ण कभी कभी चंद्रावली के कुंज में जाया करते थे, किसी सखी ने आकर के कहा, विशाखा ने कहा, राधे तुम्हें पता है श्याम सुंदर कहाँ है? आज श्याम सुंदर चंद्रावली के कुंज में पधारे हैं। इतना सुनते ही उनके नेत्रों से, श्री जी के नेत्रों से अश्रु धार धार बहने लगे। धिक्कार है मुझे, मेरा कुंज उन्हें पसंद नहीं है। यदि चंद्रावली के कुंज में जाकर उनको प्रसन्नता हो रही है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। माताओं आप सबका अनुभव है, इनको यह अनुभव नहीं है। आपका पति अथवा आपका प्रेमिक दरिद्र हो जाए, असुंदर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी स्त्री उसके लिए दोषारोपण नहीं करती, नहीं करती। लेकिन जब वो स्त्री देखती है उनका प्रेमिक किसी दूसरे स्त्री पे आ सकते हैं, वो उसे बर्दाश्त नहीं होता। होता है, नहीं होता? कोई भी स्त्री, कोई भी प्रेमिका यदि देखती है कि उसका प्रेमिक अथवा उसका पति किसी दूसरे स्त्री से आ सकता है, वो किसी कीमत पर राजी नहीं होगी, किसी कीमत पर राजी नहीं होगी। लेकिन यहां पर ये विलक्षण है, आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टुमा अदर्शनात् मर्माहतम करो तु वा, मुझे दर्शन ना दे करके मुझे तिल तिल करके मार डाले वो लंपट कृष्ण, फिर भी मेरे प्राणनाथ, फिर भी मेरे प्राणनाथ। माने उस स्तर पर प्रेमिका अपने प्रेमिक में जरा सा भी दोष दर्शन नहीं कर रही, यही है भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति है प्रेमास्पद में बिल्कुल दोष नहीं देखना, बिल्कुल दोष नहीं देखना, उससे प्रेम कहते हैं। सत्यपि ध्वंस कारणे, रूप गोस्वामी ने एक संविधान, एक नियम बनाया, प्रेम के ध्वंस होने की लाखों संभावना होते हुए भी जहां प्रेम ध्वंस नहीं होता वो सच्चा प्रेम कहलाता है, वो सच्चा प्रेम है। राधा रानी देखती थी श्री कृष्ण चंद्रावली के कुंज में विहार कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, वो कहते यथा तथा जैसा भी हो मेरे प्राणनाथ है। ये भक्ति है। इसी भाव में चैतन्य महाप्रभु 40 बरस तक रोने लगे। 40 बरस जगन्नाथपुरी में तो रोते थे और नीलाचल नवद्वीप में जितने वर्ष रहे अधिक समय रोने से बिताया। मित्रों, हमारी भक्ति में हंसने के बजाय रोने का ज्यादा महत्व है। भक्त बहुत ज्यादा हंसता नहीं है, जो बहुत ज्यादा हंसता है उसको भगवान नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे। हंसते हंसते कि मैं पाई ये प्राण प्यारे मित। एक संत हमारे संप्रदाय से बाहर संप्रदाय कबीर हुए, उन्होंने एक दोहा बनाया, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से करो प्रीत, हंसते हंसते कि मैं पाइए प्राण प्यारे मीत। उन्होंने भी कहा अरे भाई तू हंसना छोड़ दे, ये मौज मस्ती करना छोड़ दे, रोने से अपना संबंध बना ले। अरे कबीरदास तू पूरी दुनिया देख ले, हर एक के पास जाकर के पूछ, इन पत्तों से पूछ, उन यमुना से पूछ, उस गिरिराज से पूछ, क्या तुमको कृष्ण हंस के मिले? वो कहेंगे नहीं, हंस के नहीं मिले, रो करके ही मिले। और सबसे प्रामाणिक आचार्य गोपियों से पूछ, गोपियां गोपी गीत गाने लगी पर कृष्ण नहीं मिले। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालता। जब गोपियों ने वो गाना छोड़ दिया, रोना शुरू किया, तब कहीं भगवान मिले। इसलिए उद्धव से भगवान कहते हैं रुदति अभिक्षणम हसति क्वचिच्च। वो रोता रहता है दिन भर रात भर रोता रहता है। श्रीधर रोता रहता था, श्रीनिवास रोते रहते थे, रात दिन रोते थे। हसति क्वचिच्च बिलज्य उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। श्रीमद भागवतम 11 स्कंद अध्याय 14 देखिए, निकाल के देखिए भागवत में, जिनके पास होगा। रुदति अभिक्षणम, एक क्षण भी बिना रोए नहीं बिताता। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे हमें रोना सिखाने के लिए। यह है चैतन्य चरितामृत की विलक्षणता। जीवन भर उन्होंने रोया। कथम बिना रोम हर्षम, कैसे होगा? रोम हर्ष नहीं है, पुलक नहीं है, गदगद नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है, ना ना ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। यही सिखाने आए थे और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, जन्म से पहले हरि नाम, जन्म के बाद भी हरि नाम, जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद, जीवन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने सिखाया हरि नाम। खैर, मैंने तो भूमिका के रूप में इतनी सारी बातें कह दी, तो आप लोगों ने सुना होगा जन्म कैसे सची माता के उधर आए। ठीक 1486 को आए, संध्या की बेला थी, ग्रहण का समय था, भगवान का प्राकट्य हुआ। इसी छल से महाप्रभु ने आवाल वृद्ध वनिताओं से हरि नाम का गायन कराया। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कोई गाता था पुंडरीकाक्ष, कोई गाता था राम राम, कोई गाता था हरि हरि, कोई गाता था गोविंद, कोई कुछ इस प्रकार नाम संकीर्तन करते हुए गंगा स्नान के लिए जाते थे। चैतन्य महाप्रभु नाम जन्माया प्रभु हैला अवतीर्ण। महाप्रभु ने सबसे पहले नाम का अवतरण कराया, बाद में स्वयं अवतरित हुए। सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्रीहरि कीर्तन में, भाले चंदन तिलक मनोहर अलका सोहे कपूलन में। घुंघराले लट्टे, घुंघराले केस उनके मुखमंडल की शोभा को और बढ़ा रहे थे, दिव्य शोभा। अनेक अनेक लीला है। सो इन लीलाओं में से हमने एक लीला चुना है। बहुत कथा है, वैसे शाम तक तो हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन इतने दिव्य लीलाओं में से ना तो हमारी सामर्थ्य है ना तो आपका धीरज है, तो एक छोटी सी लीला का हम श्रवण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला, उनके कैसोर लीला के अंतर्गत विद्या का विलास, कि भगवान की एक लीला में हमें क्या सीखना है। लगभग जिस स्तर में हम लोग हैं, हम लोग के लिए बहुत उपयोगी लीला, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रेरित किया कि इसी लीला का वर्णन करो। तो हम उन्हीं की आज्ञा मान करके आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, तो मैं आशा करता हूं कि इस लीला का आस्वादन आप सब करेंगे और हम भी, हमें भी कराएंगे। आइए चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में प्रवेश करते हैं।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, समस्त गौरव भक्त वृंद की जय हो। चैतन्य महाप्रभु बड़े होते हैं, पहले तो जन्म लिया, फिर धीरे धीरे करके ऐसे शयन किए, 3 माह से पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार में भी उनकी विलक्षणता, श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने विश्वरूप नाम दिया और नामकरण संस्कार के समय एक विलक्षणता प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई? जगन्नाथ मिश्र ने चांदी रख दिया, हीरे मोती माणिक्य जवाहरत सब रखा, और नीलांबर चक्रवर्ती जगन्नाथ मिश्र और वहां जितनी माताएं, नदिया की जो माताजी जन स्त्री जन वहां एकत्रित हुई थी, तो सबने कहा विश्वंभर पकड़ो पकड़ो, जो तुम्हारी इच्छा है उसको पकड़ो। चैतन्य महाप्रभु सुवर्ण की ओर देखते हैं ना, वो कहते हैं ये क्या सोना है, हमारा अंग तो तुमसे भी ज्यादा अच्छा है, तो सुवर्ण की ओर आकर्षित नहीं होते, रजत माने चांदी की ओर आकर्षित नहीं होते, धान्य वहां रखा हुआ था उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, लाजा भी रखी हुई थी उनके प्रति आकर्षित नहीं होते, पर एक जगह में जगन्नाथ मिश्र ने भागवत पोथी को बांध करके रख दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा कि भागवत पोथी है, महाप्रभु घिसटते हुए जाते हैं और भागवत पर लेट जाते हैं, ऐसे ही भागवत पर लेट जाते हैं। महाप्रभु ने आलिंगन किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, एक पद गाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पद।
सकल छाड़िया प्रभु श्री सच्चे नंदाना सकल छाड़िया सकल छाड़िया प्रभु श्री साचे नंदन सका भागवत धरे प्रभु दिला आलिंगन भागवत धरिया दिले ने आलिंगन भागवत धरिया दिले ने आलिंगन दिले ने आलिंगना।
जैसे महाप्रभु ने भागवत पर लिपट गए तो सबने कहा ये विश्वंभर एक महापंडित होगा, और किसी माता ने कहा ये महापंडित नहीं, ये महावैष्णव पंडित होगा। वैष्णव पंडित निमाय पंडित की, इस प्रकार से बचपन से ही उनका लक्षण प्रकट हुआ था। अनेक अनेक लीला है, बाल लीला कहते तो बहुत मजा आता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की थी, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी माखन चोरी की थी। वैसे उधर ज्यादा माखन नहीं मिलता, उधर भात ज्यादा मिलता है, तो महाप्रभु ने भात चुराई थी, खूब भात चोरी करके खाते थे। जब कोई पकड़ लेता था, भाई एक बार छोड़ दो, दोबारा नहीं करूंगा, वो व्यक्ति छोड़ देता था। अनेक अनेक लीला है। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु बड़े होते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं। इतने शीघ्र उन्होंने विद्या का अध्ययन किया, खूब शीघ्र अध्यापक होने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु नदिया मंडल के अध्यापक थे, उसी समय की एक लीला है। इस लीला श्रवण का महात्म्य पहले सुना देते हैं, तभी आप सबका ज्यादा आग्रह बढ़ेगा। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जे सुने गौरांगेर दिग्विजय जय कोथाओ ताहन पराभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस लीला का श्रवण करता है, इस त्रिभुवन में उसकी हार कहीं नहीं हो। केवल लीला श्रवण का ये महात्म्य है। इफ यू लिसन दिस पास्ट टाइम देन यू विल हैव नो डिफीट इन एनी वे। कभी आपका पराभव नहीं होगा, ये गारंटी है। जैसे महाप्रभु का विवाह, जो कोई महाप्रभु का विवाह सुनेगा उसकी शादी नहीं होगी। एक बार हम कहीं भागवत करने गए थे तो मुझे कहे कि प्रभु जी अब रुक्मणी विवाह करो। हमारी इच्छा नहीं थी करने, कोई समय का अभाव था, ऐसा था। तो मैंने देखा कि कैसे हम बच जाएं, कोई उपाय नहीं। रात्रि को हमने सोचा, मैं कह इनसे हम बचे कैसे, समय नहीं है, हमको आगे जाना है, रुक्मणी विवाह करेंगे तो उसमें घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो मैंने भागवत सभा में कहा, सुनो यदि आप इस सभा में ये कथा सुनना चाहते तो जितने अभियाड़ी है जिसका विवाह नहीं हुआ वो किसकी शादी नहीं हुई। तो सबने कहा फिर प्रभु जी रुक्मणी मंगल नहीं होना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए, तो हम बच गए। तो स्वभाव की, जैसे आज आपने सुना होगा जो चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला सुनता है तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ये विपरीत है। उसी प्रकार जो महाप्रभु की विवाह लीला सुनेगा उसका विवाह नहीं होगा, जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का ध्यान करेगा उसमें काम विकार नहीं आएगा। ये सब विपरीत बात है, क्योंकि अध्यात्म जगत की ये सब बातें हैं। और चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का जो श्रवण करेगा तो दुनिया में वो हारेगा नहीं, वो जीतेगा। और ये हमारा अनुभव है। मैं जो चैतन्य चरितामृत का पाठ करता था, इसी अध्याय को बार बार पढ़ता था, इसलिए शास्त्र में हमारी भी हार नहीं होती। खैर इसको तो मैंने जो भी हो मजाक समझिए या जैसे भी समझिए, पर इस लीला का ये महत्व है और ये पक्की बात है। यदि कोई इस लीला का श्रवण करता है तो उनकी कभी हार नहीं होगी। तो लीला किस प्रकार से है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने विद्यार्थियों के साथ विराजमान है गंगा के उस पाठशाला में, रोज रोज पढ़ाते थे, धातु व्याकरण अलंकार आदि पढ़ाते थे। उस समय विद्या विलास के लिए अनेक स्थान भारत में हुआ करते थे, इस समय भी हैं, पर उस समय चार स्थान मुख्य थे। प्रभुपाद ने लिखा है, एक तो स्थान था कश्मीर, दूसरा स्थान था नवद्वीप, तीसरा स्थान था वाराणसी और चौथे स्थान था बिहार नालंदा। ये स्थान तो जितने इस स्थानों से पंडित हुआ करते थे, सबसे ज्यादा प्रवीण पंडित निकलते थे नवद्वीप से। वहां न्याय शास्त्र का जो पारंगत होता था उनको भट्टाचार्य का उपाधि मिलता था, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जो पुरी में रहते थे वो न्याय शास्त्र के बड़े धुरंधर मूर्धन्य पंडित थे, उनको सार्वभौम, वैसे उनका नाम नहीं था सार्वभौम भट्टाचार्य ना, उनका नाम था मेरे ख्याल में महेश्वर विशारद ऐसा कुछ था उनका नाम, वैसे उनका उपाधिगत नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि न्याय शास्त्र के वो पदवी उनको मिली थी डिग्री। महाप्रभु जब वो अध्यापना करते थे नवद्वीप में, एक गुजब आई, गुजब मा र्यूमर ऐसे, क्या 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 क्या, वो एक बड़े दिग्विजय पंडित आया है, क्या नाम है, केशव भट्ट, कैसे आ रहा है, बोले छत्र चामर और हाथी पर बैठ करके आ रहा, अपने साथ अनेक शिष्य उनके चलते हैं, हाथी घोड़े छत्र चामर वो चलते हैं। उसमें तत्कालीन समय में ये विशेषता होती थी, जो पंडित होता था उनको दिग्विजयी कहते थे, दिग्विजय शब्द का अर्थ आते हैं, वो अनेक दिशाओं में जाता था और पंडितों को चुनौती देता था, आओ कोई पंडित हो तो शास्त्रार्थ हमसे करो, यदि आप हरा दोगे तो ये प्रमाण पत्र आप ले लो, और यदि आप नहीं हरा पाओगे मुझे आप प्रमाण पत्र लिख दो कि हम हारे और तुम जीते। रूप गोस्वामी के समय भी ऐसी घटना घटी थी। उस तत्कालीन भारत वर्ष में विद्या का बड़ा उत्कर्ष होता था, आजकल भारत गधा हो गया, किसको पूछो संस्कृत ना, वो क्या पढ़ाएंगे, ना माँ पिता पढ़ते हैं ना माँ पिता पढ़ने देते हैं, भक्त ही नहीं पढ़ते, ये प्रमाण है। ये देखिए हमारे राधा चरण प्रभु बैठे हुए हैं, आज को दो चार साल पहले ये संस्कृत के बड़े विद्वान है, मैंने इनसे निवेदन किया प्रभु जी आप पढ़ाइए भक्त लोग को पढ़ेंगे, पहले दिन आए 10, दो चार दिन के बाद आए 5, और दो चार दिन चला गया 2, और चार दिन के बाद ये अकेले करते क्या है, मुझसे बोले प्रभु जी कोई नहीं है, हम अकेले में क्या, फिर अकेले ध्यान करो, कोई नहीं आता था। सो तत्कालीन भारत वर्ष का गौरव वाकई था कि विद्या का विलास। आप ईमानदार विचार करिए कि आपका सारा धन छीना जा सकता है पर विद्या धन जिसके पास है वो हमेशा धनवान रहता है, इसको चोर नहीं लेता, कोई नहीं ले पाएगा, ये विनाश नहीं होगा, दिन पर दिन ये बढ़ता रहता है ये धन। तब भारत का ये विलास था, तो चारों ओर गुजब, चारों ओर बात कानाफूसी होने लगी, वो इतना बड़ा पंडित आ रहा है, पंडित आ रहा है, और नवद्वीप के जितने पंडित थे उनमें एक विषाद की छाया हो गई। क्या है, विषाद का बादल मंडराने लगा, इतने बड़े कश्मीर के पंडित है और इतने प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं, हमको हरा देंगे, वो करेंगे वो करेंगे, क्या होगा, बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी हमारे, बहुत अपमान होगा, बचेंगे कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस विमर्श के साथ वो पड़े हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे, क्या करेंगे क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं था। पर ये पंडितों में क्या बुराई थी, ये सारे शास्त्र के अध्ययन तो करते थे पर एक दूसरे की बुराई खूब करते थे, मंगल चंडी वगैरह पाठ करते थे, केवल व्यवहारिक बात करते थे, इनमें तत्वगत ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं था, केवल एक दूसरे के प्रति हिंसा करना, ईर्षा करना, ये सब है। हमारा भी कुछ कुछ अनुभव है, हमें बड़ा कष्ट होता है, मैं देखता हूं हमारे संप्रदाय में भी, वैष्णव संप्रदाय हो बाकी संप्रदाय हो, भक्तों भक्तों में संबंध बड़ा खट्टा है ना, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव रखना चाहिए वो नहीं रख पाते, एक भक्त इधर रहता है दूसरा भक्त दूसरा रहता है, वो बातचीत भी नहीं होती है, नहीं राम राम भी नहीं होता, राम राम भी नहीं होता, देखो उनका भी अनुभव है, हमारा भी अनुभव है। ये बहुत दुखद बात है कि नहीं प्रभु? मुक्तिदाता प्रभु दुखद बात है। ठीक है, जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसी की निंदा नहीं करना, आप दस पहला अपराध कहते हैं कि उन भक्तों की निंदा मत करना जिन्होंने हरिनाम प्रचार के लिए जीवन उत्सर्ग किया है, कि बाकी सबकी निंदा करना? इसलिए उस अपराध को हम ऐसे ही लेते हैं, किसी की निंदा नहीं करना। घटेगा उससे भक्ति घट जाएगी, घट जाएगी। इसलिए ईर्ष्या बहुत है, इनसे मुक्त होना चाहिए, यह ठीक नहीं है। तो पंडित तो थे पर उनमें बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी। तथापि वो हेनतान मायार बढ़ाई बुझीवारे तारे ताने हेनजन नाई, माया के चलते होता था। हंस गुह्य स्तुति में दक्ष महाराज स्तुति करते हैं कि जो वितर्क तर्क होता है ना वो सब माया के चलते ही होता है, माया के चलते। हमको खुद अनुभव है, आज को 7-8 वर्ष पहले हम भी खूब तर्क वितर्क करते थे, खूब तर्क वितर्क करते थे। मैंने देखा तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं, नीचा दिखाने से कोई लाभ नहीं होता, उससे शत्रुता होती है, उससे दुश्मनी होती है, उसमें से प्रेम सौहार्द घटता है, नहीं होता। उस विद्या का क्या लाभ है जो तर्क की ओर ले जाए? विद्या का अर्थ हो तो प्रेम है। जो भी हो, इनमें बड़ा संकट छाने लगा कि भाई क्या करेंगे। तो उसी समय वो दिग्विजय पंडित वहां आ गया नवद्वीप में आधम का। हेन काले तथा एक महादिग्विजयी आइल परम अहंकार युक्त है। देखो है नाम बड़ा दिग्विजयी और अहंकार। हेन काले तथा एक महादिग्विजयी आइल परम अहंकार युक्त है। जब काश्मीर से ये अहंकार का भोजा लेकर के आता है, फिर तो सारे भारतवर्ष में जितने पंडित सब में अहंकारी होता है। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा अहंकार जो है ना बहुत भारी बुरी चीज है। अधिक विद्या प्राप्त हो जाना, अधिक सुंदरता का प्राप्त हो जाना, अधिक धनवान हो जाना, ये सब अहंकार उत्पन्न करने वाला है, ये भक्ति के बाधक तत्व है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री एधमान मद पुमान, ये व्यक्ति में मद को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को नशेखोर बना लेते हैं, व्यक्ति एकदम मतवाला होता है। ओहो आढ्यो भी जनवारस्मि कोनोस्ति सोदृशो मया यक्षी दास्यामी मोदीस्य इत्यज्ञान विमोहिता, कौन है मेरे समान? इसको अहंकार कहते हैं, महा अहंकार लेकर के आया। सरस्वती मंत्रेर एकांत उपासक मंत्र जपी सरस्वती करीले का वश। हां कुछ विशेष शक्तियां होती है, इसे दिग्विजयी ने सरस्वती मंत्र का जप करके सरस्वती मंत्र को सरस्वती को अपना अधीन कर लिया था। ये मंत्र का प्रभाव है, ये मंत्र का प्रभाव। कोई भी व्यक्ति कुछ विशेष शक्ति हासिल करना चाहता है, अपने कर्मों से अधिक प्राप्त करना चाहता है, उनको देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा या मंत्र का, भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। मंत्र जो होता है वो देवताओं का सूक्ष्म रूप होता है। इति मंत्रम मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, भगवान श्री कृष्ण का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये शब्द रूप में श्री कृष्ण ही साक्षात है। व्यक्ति जब इसका जप करता है, अभ्यास करता है, धीरे धीरे कृष्ण का साक्षात्कार करने लगता है। तो दिग्विजय पंडित था, ये सरस्वती मंत्र का जप करता था। सरस्वती प्रार्थना सबको आती है, अब बताओ कैसे सरस्वती आई? हम 3 क्लास में पढ़े थे याद है, दिग्विजय ने मंत्र जप आइए हम भी जप लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना या वीणा वर दंड मंडित करा
या शुभ्रा वस्त्राव्रता या ब्रह्माच्युत संकर प्रभृति वीर देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा।
ये मंत्र यदि कोई भक्त प्रतिदिन गाता है सरस्वती की कृपा से उनमें शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। जो भी मंत्र वो गाता है पर लिखा नहीं है पर ये सरस्वती मंत्र है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासन श्वेत कमल पर आरूढ़ा और वीणा जंत्र को अपने कर कमल में लिए हुई श्वेत परिधान धारण किए हुए ब्रह्मा अच्युत शंकर आदि के द्वारा वंदिता हुए भगवती सरस्वती हमारी अविद्या का सदा के लिए हरण करे। निशेष जाड्यापहा। वाकई ये सरस्वती लक्ष्मी इनमें कोई भेद नहीं है, ये सब एक ही शक्ति है। वही शक्ति लक्ष्मी है, वही शक्ति सरस्वती है, वही शक्ति माया है, कोई अंतर नहीं है। वो एक जैसे अंतःकरण हमारा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, किसने देखा कि मन के लिए ये सीमा रेखा है, बुद्धि के लिए इतना है, इसके अहंकार के लिए इतना है और संकल्प के लिए इतना है। नहीं, ना ना ना, एक ही अंतःकरण भिन्न भिन्न कार्य करता है इसलिए भिन्न भिन्न नाम से नामित है। जब संकल्प विकल्प करता है उसका नाम होता है मन, जब निश्चय कर लेता है उसका नाम होता है बुद्धि, जब वो संस्कार को धारण करता है तो उसका नाम होता है चित्त, जब मैंपन करता है तो उसका नाम होता है अहंकार। इन शब्दों को ठीक ठीक इन भावों को हमको समझना चाहिए। सिद्धांत वलिते चित्ते ना करो आलस। सिद्धांत को जिसने नहीं समझा कृष्ण भक्ति ठीक ठीक से नहीं हो पाई, होता भी नहीं, आपको लगेगा पर होगा नहीं है। तो सरस्वती को इन्होंने वश में कर दिया। मंत्र जप, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास आ पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप का एक मंत्र जप में प्रबल पराक्रम होता है, उसमें अति मानवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। हनुमान में जो इतनी शक्ति है कहां से आई? मंत्र जप। और हम कब से मंत्र जप कर रहे हैं? नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मंत्र जाप का विधान है, मंत्र जाप से ही शक्ति आती है। अतुलित बलधामम। अब ये देखिए प्रकट है, सरस्वती मंत्रेर एकांत उपासक मंत्र जापी सरस्वती करीले का बस विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्ष स्थिता मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन्माता। ये चैतन्य भागवत कहती है, हम नहीं कह रहे। कभी आप प्रश्न करोगे प्रभु जी आपने कह दिया ये लक्ष्मी सरस्वती सब एक ही है, कैसे? ना ना, वृंदावन ठाकुर कहते हैं वैकुंठ विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु भक्ष स्थिता। ये सरस्वती और कोई नहीं है, ये साक्षात विष्णु भक्ति है। डोंट टेक मंडन कंसिडरेशन, ये अलग, ये फलाना, ये फलाना। कई भक्तों में हम ये देखते हैं, है ना, वो अधजल गगरी छलकत जाए, भारी गगरिया चुपके रहे। जितने जितने आप में ज्ञान बढ़ेगा आप चुप्पे हो जाओगे। नए नए भक्त के रूप में आओगे, बोले प्रभुपाद सेठ यही कहोगे, अर्थ नहीं समझ में आएगा। लेकिन इस प्रकार से अपना अहंकार ही साबित करते हैं। देखिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्ष स्थिता, विष्णु के वक्ष में रहने वाली ये विष्णु भक्ति का स्वरूप है, स्वरूपिणी। मूर्ति भेदे, मूर्ति मात्र भेद है, रमा सरस्वती जगन माता, वही एक ही जगन माता है, एक ही है, वही राधा जी ही दुर्गा बनती है। जब वो अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा, अच्छा बिजली कोई दो चार पांच थोड़ी होती है, प्रभुपाद जी समझाते बिजली भी कोई दो चार आठ नहीं होती। वही बिजली फ्रिज में ठंडक देती है, वही बिजली हीटर पे गर्माहट देती है। सब भगवान की शक्ति है, भगवान एक है, शक्ति है, पर उनके व्यवहार के रूप में उनके अंतरंगा बहिरंगा ये सब भिन्न भिन्न भाव है। सो मित्रों, यहां वृंदावन ठाकुर कहते हैं वो व्यक्ति को जब पंडिताई, जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो इतना अहंकार इतना फूल गया तो सारे दुनिया में घूमने लगा। सर्वशास्त्र जिह्वा आयुष निरंतर है ना नाही जगते जे दिवे का उत्तर। बोले सारे वेद विद्या संहिता न्याय व्याकरण ये सारे जो दर्शन है उनकी जिह्वा पर रहते थे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि उनको उत्तर देने वाला कोई था। सर्व राज्य देश जिनी जय पत्र लई नवद्वीपे आसिया छे एक दिग्विजयी। सब स्थान से प्रमाण पत्र लेकर दिग्विजयी नवद्वीप में आकर के पहुंच गए। सरस्वती वर पुत्र सुनी सर्व जने पंडित सभारे बड़ा चिंता हैल मने। ये सरस्वती के वर पुत्र आया है, सब लोगों में चिंता हो गई। अब क्या होगा, अब क्या हो गयो, अब क्या हो गयो, क्या होगा क्या होगा। हम क्योंकि इनमें जैसा अहंकार उनमें भी वैसे अहंकार। जिन्हें पंडित में अहंकार होता है उन्हीं को हारने से कष्ट होता है, वैसे जिनको अहंकार नहीं है तो उनको कष्ट का ही बात का। ये सारे कष्ट जम्बू द्वीपे जतना छे पंडितेर स्थान सवा जिनी नवद्वीपे जगते वाख्या बाखान। बोले जम्बू द्वीप में जितने जितने स्थान है जहां जहां पंडिताई होती है सब जगह के ये नवद्वीप के पंडित सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। ये अहंकार नवद्वीप का था। हेना स्थाने दिग्विजयी जाइवे जिनिया संसारे यही अपत्रिष्ठा घुसीवे सुनिया। अरे दिग्विजय आएगा हमको पराजित करके चला जाएगा, हमारी नाक कटी जाएगी, सबसे प्रतिष्ठा हमारी हानि हो जाएगी, क्या करेंगे क्या करेंगे, इस प्रकार सोच में पड़े थे। कहां जाओगे पुत्र? तो इसी प्रकार जब वो विचार कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के वो सखा चैतन्य महाप्रभु के विद्यार्थी आकर इनको बोलने लगे, निमाई पंडित जी एक बहुत बड़ा पंडित आया है, लगता है कि नवद्वीप के नाक कट जाएगी। महाप्रभु ने मुस्कुराया। अच्छा महाप्रभु जब मुस्कुराते हैं भगवान की मुस्कुराहट क्या है? हाँ हासम च जनोन मादकारी च माया। भगवान हंस दिया मतलब गड़बड़ होने वाला है। भगवान के हंसी से खूब सावधान रहना, कहीं भी हंसे तो गड़बड़ शुरू। अब ठाकुर जी हंस दिए। एक दिग्विजयी सरस्वती वस करी सर्वत्र जिनिया बोले जय पत्र धरी हस्ती घोड़ा दोला लोक अनेक संघति संप्रति आसिया हैला नवद्वीपे स्थिति नवद्वीपे अपनार प्रतिस्पर्धा चाय नहे जय पत्र मांगे सकल सभाए। और नवद्वीप आकर चुनौती देता है, आओ नवद्वीप के पंडित जन हमसे प्रतिस्पर्धा करो, नहीं तो प्रमाण पत्र जय पत्र में लिख दो हम हारे तुम जीते, लिखो हम हारे आप जीते लिखो। सुनि शिष्य गणेर वचन गौर मणी। गोरा चांद ने जब अपने शिष्यों का वचन सुना हसिया कही ते लागिले न तत्ववाणी। हंस दिए ना, जहां हंसे वही गड़बड़ शुरू। तो भगवान क्या कहते हैं? बोले सुनो सुन भाई सब यही कही तत्व कथा। अरे भाई हम तुम्हें तत्व कथा कहते हैं, सुनो। शिष्यों ने कहा तत्व कथा? हाँ हाँ बोलिए क्या तत्व कथा। अहंकार नाश है ना ईश्वर सर्वथा। महाप्रभु कहते यही तत्व कथा। बोले क्या तत्व कथा? अहंकार ना सहन ईश्वर सर्वथा। ईश्वर कभी अहंकार को सहन नहीं कर सकता। अभिमान मत करो। जे जे गुणे मत है करे अहंकार अवश्य ईश्वरता करे न संहार। जे जे गुणे अहंकार कब आता है? कोई विशेष गुण है, आपको बढ़िया खाना बनाना आता है, आपने अहंकार कर लिया। आप में बहुत शास्त्रीय ज्ञान है, आपने अहंकार कर लिया। और आप देखने में खूब सुंदर है, आपने किसी को माना ही नहीं, आपके पास धन बहुत है, आपके पास अहंकार आ गया। जे जे गुणे मत्त है करे अहंकार अवश्य ईश्वर तहा करेन संहार। इंद्र को अहंकार हो गया था, मैं इंद्र हूं, भगवान ने उनका अहंकार को नष्ट किया। बलि में भी अहंकार हो गया, भगवान नष्ट किया। इसलिए अहंकार ठीक नहीं, महाप्रभु कहते हैं यही तत्व कथा है। इसको गाओगे क्या पद?
सुन भाई सुन भाई सब यही कही तत्व कथा, सुन भाई सब यही कही तत्व कथा, अहंकार न सहेन ईश्वर सर्वथा, अहंकार न सहेन ईश्वर सर्वथा।
अहंकार नहीं सहते। फल वस्तु वृक्ष आर गुणवंत जन नम्रता से ताहर स्वभाव अनुक्षण। बोले जिस पेड़ पर फल होता है और जिस व्यक्ति में गुण होता है वो दोनों झुक जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन नम्रता से ताहर स्वभाव अनुक्षण। एक कहावत है सूखी चाणक्य पंडित ने लिखा है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमन्ति कदाचन। झुकना जो है वो तो जान की पहचान होता है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दे मुर्दों की सब जो बड़ी होती है ना वो अकड़ जाती है, वो झुकता नहीं है। पर जो गुणवान जो जीवित व्यक्ति होता है वो झुक जाता है। इसलिए यहां कहते हैं कि नहीं, जैसे फल वाला वृक्ष झुक जाता है ऐसे गुणवान व्यक्ति भी झुकता है। और उदाहरण देते हैं, देखो कार्तवीर जी अर्जुन हेय नहुष वेण वाण नरक रावण। रावण का अहंकार कहां चला गया? लंका साक्षी है। हेय माने कार्तवीर जी, कार्तवीर जी अर्जुन वो उसके 1000 भुजा थे, उसको सहस्र बाहु अर्जुन कहते हैं, उसके कट गए सारे। और नहुष, नहुष का नाम सुना होगा, अरे नहुष स्वर्ग पहुंचा, इंद्र को चुनौती देने लगा, सप्तर्षियों ने उनको श्राप दे दिया, नहुष इधर आए, नहुष उनका गर्भ नष्ट हो गया। बेन, बेन का नाम सुना, और महर्षियों ने हुंकार किया वहीं पर उनको धराशायी किया। बाण, उनके भी 1000 भुजा थे, वो पहाड़ों से टकराता था, भगवान ने काट दिया उनके सारे भुजों को। और नरक रावण, ये जितने थे बड़े बड़े राजा थे, कहां है उनका अहंकार? जरा सोचो ये अहंकार किस बात के लिए होता है, इसका कारण क्या है? मित्रों व्हाई अहंकार कम्स, किस लिए? अज्ञानता। वेरी नाइस उत्तर माताजी ने दिया, बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। मुझे किसने कहा विद्या अध्ययन करने से अहंकार होगा? नहीं, आप जितने जितने ज्ञान का आहरण करते चले जाओगे आप में अहंकार उतना कम होता चला जाएगा। हां एक ही बात जरूरी है, परंपरा में गुरु के अधीन रहकर करने से होगा। ये जो सब पंडित थे इनमें अहंकार हो रहा था क्योंकि अध्यात्म से ये दूर थे, इसलिए उनको केवल शास्त्रीय शब्दों का अहंकार हो रहा था, ये सचमुच नहीं समझते थे। यदि कोई व्यक्ति सचमुच ज्ञानी है, अब मान लीजिए किसी पेड़ में, किसी आम के पेड़ में आम फले है, वो अगर अहंकार करे हमारे में इतने फल है, अरे भाई तू समझ ले तेरे में ये फल कहां से आया, तू जो खड़ा हुआ है तेरे जड़ से ये खाद पानी ऊपर जा रहा है, ये किसके किसकी आज्ञा से? 3 मंजिल ऊपर को कौन पानी, अपने नारियल पानी देखा होगा, नारियल पेड़ कितने फीट हाइट का होता है? 30-40 फीट हाइट का नारियल पेड़ होता है और उसके ऊपर नारियल होता है और नारियल के भीतर पानी, कितना पानी, बढ़िया बढ़िया पानी होता है। उस 30 फीट हाइट में नारियल के भीतर पानी किसने छोड़ा? तुम्हारे दादाजी ने छोड़ा? किसने छोड़ा जी? हाँ, तो नारियल अगर गर्व करे मेरे में तो मेरे पेट में बहुत मीठे पानी है, तुम्हारे में खारा पानी है, अरे भाई तेरा अहंकार दो कौड़ी का है। नारियल को समझना चाहिए तेरे में जो विशेषता है वो तेरे बदौलत नहीं है, वो दूसरे की बदौलत है, वो भगवान की बदौलत है। तो हमारे में जो ज्ञान है, तर्क शक्ति है, वो सारा का सारा भगवान की देन है। इसलिए भगवान कहते हैं महादिग्विजयी सुनिया छे जे जे जन, ये सब चले गए अहंकार से। बुझ देखी कार गर्व चूर्ण नहीं है, सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं सह। ईश्वर कभी किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करता। एते का तहार जत विद्या अहंकार, देखी वे एथाई सब हई वे संघार। और छात्रों देखना, थोड़े ही दिन में इसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। एतवली हासी प्रभु शिष्य गण संगे, संध्या काले गंगा तीरे आसिले नरंगे। तो इस प्रकार चर्चा करके एक दिन की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर अपने शिष्यों के साथ विराजमान है। विराजमान होकर सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान की माया है, भगवान चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते। भगवान ने अपने संकल्प शक्ति को प्रेरित किया, दिग्विजयी इसी समय आओ। पर महाप्रभु सोचते हैं मैं दिग्विजयों को तो हराऊंगा, उनका अहंकार तो नष्ट करूंगा, पर कैसे नष्ट करूंगा, कैसे नष्ट करूंगा? क्यों सोच रहे हैं, क्या कारण? ये मोबाइल तो चलाया नहीं, इसको खा खास रखा क्यों, उसे हटा दो, वीडियो तो ऑन नहीं किया था, अब देखा तो शून्य शून्य महाशून्य, बताओ हटाओ इसको, यहां रखो। अरे बटन ऑन नहीं किया तो कैसे चलेगा बताओ। अब हमारी दृष्टि अब पड़ रही है, देखो देखो आप भी देख लो, सुनिए बताओ, अब पछताए हो तो क्या, जो चिड़िया अब तुम्हारी चिड़िया, हमारी ये चिड़िया चुग रही कि ना चुग लिया? चलो ठीक है, एक एक में तो हो ही रहा। सचैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं, देखो यही तो भगवान की भगवत्ता है, क्या विचार कर रहे हैं? तो महाप्रभु कहते हैं ए विप्रर हया छे महा अहंकार, इस ब्राह्मण का महा अहंकार हुआ है। जगते मोहर प्रतिद्वंदी नहीं आर, मेरे से और कोई प्रतिद्वंदी बड़ा नहीं है, मुझसे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। सभा मध्य जय जदि करिए यहाँ रे, मृत तुल्य हईवे का संसार भीतरे। और यदि मैं पूरी सभा में इनको हरा देता हूं ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए कभी कभी हम भक्तों से हम कहते हैं, देखो हमारे विचार कभी कभी आपको उल्टे लगते होंगे, लेकिन वो के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हम कहते हैं। भक्तों को मान अपमान का विचार करना चाहिए। आप यदि मान अपमान का विचार नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो उत्तम कोटि के भक्त वो ना करे। यदि आपको किसी ने कहा अरे शास्त्र शास्त्र नहीं जानता, बिल्कुल मूर्ख है, आ गया कहीं से, और आपने हाँ कह दिया बहुत अच्छा है, भगवान ने कहा मान अपमानयो तुल्य, आप वैसे ही रह जाएंगे। नहीं, आपको वो बात लगनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, उनको अपमान लग गया और वो अपमान की मिर्ची ऐसे लगी, वो आज भी चमक रहे हैं। यदि वो मिर्ची नहीं लगती क्या ध्रुव भाई चमकते? पर तुमको अपमान की मिर्ची नहीं लग रही है, हां कह दिया नहीं, अपमान का फीलिंग होना चाहिए। यदि आपसे कोई कहता है अरे वो शास्त्र नहीं जानता, आप ऐसा संकल्प करो एक दिन प्रकंड विद्वान होकर के हम तुमको दिखा देंगे, ऐसा करो। चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा संकल्प किया था। जो चैतन्य महाप्रभु खूब तर्क वितर्क करते थे, ये वैष्णव लोग उनसे बातें नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु का एक मित्र था, उनका नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद स्नान करके आ रहा था और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुकुंद इधर आओ, मुकुंद साइड मार के चले गए। महाप्रभु कहते अच्छा आपने को वैष्णव मानते हो, हमको वैष्णव नहीं मानते हो। मुकुंद एक दिन देखना नवद्वीप में हम ऐसा वैष्णव बनेंगे सारे लोग हमारा गुणगान करेंगे। महाप्रभु ने संकल्प किया और देखो कितने बड़े वैष्णव बने। अब ये तो केवल एक भाव को लेना चाहिए, वो तो सब भगवान है भक्त है वो जो भी कुछ है, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में महाप्रभु ने सिखाया। सो संसार में विद्वान बनना सुंदर बनना ये गलत नहीं है। आप सुंदर हो जाओ बहुत अच्छा है, आपको लोग देखने आएंगे, आपको प्रचार करने में बड़ा सरल होगा। यदि आप हेमा मालिनी प्रचार करे तो बड़ी सरलता से प्रचार कर सकती है ना। तो सुंदर होना धनवान होना विद्वान होना इसमें कोई द्विरिक्त नहीं है। समय ऐसे बीतता चला जा रहा है, बेकार का समय आप बिता लोगे खा पी करके, नहीं इसी जीवन में कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए। अरे मंत्र जप करके सरस्वती को बस में कर लिया, बाहर का एक व्यक्ति, खैर वो तो महाप्रभु का पार्षद ही था, तो महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि ये मर जाएगा ये ठीक नहीं है। प्रतिद्वंदी सभा मध्ये जय जदि करे यहारे मृत्युतुल्य हैवे का संसार भीतरे विप्रेर लाघव करी। अच्छा दूसरी बात सोचते हैं, यदि मैं इस ब्राह्मण को हरा दूंगा सभा में, विप्रेर लाघव करीवे का सर्वे लोके लूटीवे सर्वस्व विप्र मारीवे मरीवे कशोके। तो संसार में ब्राह्मणों का कोई आदर कोई नहीं करेगा यदि ब्राह्मण का पराजय हम कर देते हैं सभा में। इसलिए हर बात पर चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं क्या करेंगे, क्या करने से दोनों पक्ष होगा। इसलिए मित्रों भगवान ही एकमात्र बुद्धिमान है जो इंद्र को भी खुश कर सकते हैं और बलि को भी खुश कर सकते हैं। बलि भी चाहता है कि हमको भी इंद्र पद मिले और इंद्र भी चाहता है कि मैं भी इंद्र पद पर बैठा रहूं। काम कैसे बने, ये काम केवल भगवान कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कपंडित स्तद परम शरणम समयात भक्त प्रयात ऋतगिर श्रोध कृतज्ञ। कौन पंडित है जो श्री कृष्ण का अतिरिक्त और किसी की शरण लेगा। यदि कोई व्यक्ति विद्वान होता है वो भी भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होता है। भगवान में ये सब विशेषता है, वो विचार कर लेता है हाँ भगवान में ये सब विशेषता है। इसलिए बिल्कुल चुनौती, भागवत चुनौती देती है कब पंडित है, कौन संसार में पंडित है जो श्री कृष्ण का शरणागत नहीं होगा। इसका मतलब यदि वो पंडित होगा वो श्री कृष्ण का शरणागत होगा। चैतन्य महाप्रभु ये दो बात पर विचार कर रहे हैं, यदि इसका मैं अपमान करता हूं सभा में एक तो बात होगी ये मृत्यु को प्राप्त करेगा, क्यों ये बड़ा मानी है। और गीता में भगवान ने कहा संभावितस्य चाकृतिरे मरणादतिरिच्यते, जिसका अपमान होता है वो रोज रोज मरता है, मरने वाला तो एक दिन मर जाता है, रोज रोज मरने के बजाय एक दिन मर जाना ज्यादा अच्छा है। इसलिए क्षत्रियों को ज्यादा अपमान लगता है, वैश्यों को शूद्रों को अपमान का बोध ज्यादा नहीं होता। और आप भागवत में देखना, भागवत में अधिकतर क्षत्रिय भक्त आपको मिलेंगे। आप पूरे देखिए, पूरा भागवत पढ़िए, ब्राह्मण बहुत ऊंचे लेवल में चला जाता है, उनका मानाप मान योस्तुल्यो स्तुल्यो मित्रारी पक्ष हो वो बहुत हाई लेवल पर चला जाता है। शूद्र और वैश्य वैश्य कम्युनिटी के लोग जो है उनमें मान अपमान का उतना बोध नहीं होता। नारद मुनि कहते हैं अहो तेज क्षत्रियाणाम, 5 वर्ष का बालक इनको मान अपमान का इतना भेद हो गया। इसलिए भक्ति करना सबके लिए है, सभी कोई कर सकता है, लेकिन मान अपमान बोध वाला जो बात भाव है वो क्षत्रिय ब्राह्मणों में ज्यादा होता है। तो महाप्रभु कहते हैं ये मर जाएगा। और दूसरी बात है कि ब्राह्मणों की बड़ी निंदा हो जाएगी, तो हम ऐसे उपाय करेंगे ना ब्राह्मणों की निंदा होगी ना ये ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त होगा और इनका अहंकार नष्ट होगा। 3 काम, ये आसान काम है क्या? ये आसान काम नहीं है, जो चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार विचार करके दुख ना पाइवे विप्र गर्व हवे क्षय बिरले से करिवाऊं देख दिग्विजय जाए, इस प्रकार सोच करके महाप्रभु सोचते हैं कि अकेले में हम दिग्विजय को हरा देंगे, बस कोई लाभ नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा, पंडित लोग जीवित रहेंगे, सबका काम बन जाएगा। यह है चैतन्य महाप्रभु की लीला। क्या यह सीखने वाली बात नहीं है? और हम लोग बात बात में एक दूसरे का अपमान करते हैं, महाप्रभु सोचते हैं नहीं करना चाहिए। और हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों को नहीं मानते, ये और उठपटांग बात है। यहां लिखा हुआ है जब ये तो कलयुग की बात लिखी गई ना, ये वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत की रचना करते हैं कौन से युग में? कलयुग में। तो कलयुग के ब्राह्मण की बात तो आती है, यहां महाप्रभु जिस ब्राह्मण की बात करते हैं कौन से युग का ब्राह्मण? सो इसलिए मित्रों हर बात को समझा करो, बहुत बारीक से समझना पड़ेगा। एक वाक्य कहीं आपने पढ़ा उसको उठा करके यहां करना वहां करना, नहीं नहीं नहीं, कलौ शूद्र संभवा। अरे भाई कलौ शूद्र संभवा ठीक है, पर इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण बिल्कुल नहीं है। जैसे बरसात में वर्षा होती है ठीक बात है, पर इसका मतलब नहीं कि धूप बिल्कुल नहीं होती है। शीतकाल में शीत होता है बिल्कुल सही बात है, पर इसका मतलब नहीं कि दोपहर को धूप नहीं लगती ना। इसलिए जन्मजात जो ब्राह्मण हैं उनके प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। अरे प्रभु ब्राह्मणों को छोड़िए, मां प्रभु ने कहा कि जो कीट है जो कीड़ा है उनको सम्मान देना चाहिए। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, प्रत्येक जीव में भगवान की स्थिति है, इसलिए प्रत्येक का सम्मान आदर करना चाहिए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सोचकर एक विचार करते हैं, नहीं एकांत में हम उनको हरा देंगे ताकि विप्र का दुख नहीं होगा, उनका गर्व भी नष्ट हो जाएगा, नवद्वीप के जितने पंडित वो भी खुश हो जाएंगे और हमारे शिष्यों को भी शिक्षा मिल जाएगी। एक लीला में महाप्रभु कई काम करते हैं, कई प्रकार विचारों को करते हैं। तो इस प्रकार सोच करके श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा के उस घाट पर बैठे हुए हैं। संध्या का बेला, महाप्रभु का थोड़ा रूप देखते हैं, महाप्रभु कैसे हैं। आ हा हा, दिग्विजयी निशाएं आइला से स्थान है, महाप्रभु कैसे विराजमान हुए हैं। परम निर्मल निशा पूर्ण चंद्रावती की बा शोभा हया आछेन भागीरथी। आ हा हा हा, उस ज्योत्स्नावती रात्रि उस समय गंगा जी की जो अपूर्व शोभा अपूर्व छटा, इसको वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नमामि गंगे तब पाद पंकजम सूरा सुरैर बंदित दिव्य लोकम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, यावी लचच्छ्री तुलसी विमिश्रो। आहा, सुखदेव श्री सुत गोस्वामी कहते हैं जो भगवान के चरणार बिंदुओं का पराग को लेकर के चलता है, वो चलती है, वो गंगा की धारा है। यावी लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांगी रेणुभ्य अधिकंबु नेत्री पुनाति लोकान उभयत्र शेषान कस्तान सेवित मरिष्यमाण। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा? उस भाग्यवती गंगा के तट पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान हुए हैं। शिष्य संगे लैया गंगा तीरे आछे न ईश्वर अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्वे मनोहर। आहा, भगवान की वो रूप शोभा सारी दुनिया को आकर्षित कर रही थी। हास्य युक्त श्री चंद्र वदन अनुक्षण निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्री नयन। महाप्रभु की शोभा वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। महाप्रभु के मुखमंडल पर सदैव मंद हास रहता था, निरंतर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते थे। निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्री नयन, और महाप्रभु की दृष्टि में हमेशा दिव्यता झलकती थी। जिस पर वो दृष्टि पड़ती थी तो जन्म जन्मांतरों का कर्म चक्र उनका समाप्त हो जाया करता था। मुक्ता जी ने श्री दर्शन अरुण अधार दयामय सुकोमल सर्व कलेवार। भगवान की जो दंतावली थी, जो दांत बड़े छोटे छोटे और मुक्ता की भांति चमकते थे। मुक्ता जिनी श्री दसन अरुण अधर, और उनका होंठ लाल लाल, अधर अरुणिमा से युक्त था। दयामय सुकोमल सर्व कलेवर, और उस दयामय चैतन्य महाप्रभु का अंग अंग सुकुमल था, सुकुमारता से भरा हुआ था उनका शरीर। आपने देखा होगा कई लोगों की चमड़ा जो एक खाल है ना, बड़ी कठोर होती है, उनका दिल भी बड़ा कठोर होता है। आप अपने मस्तक पर हाथ लगाओ, यदि आपके बाल कोमल है तो आपका दिल भी कोमल है। ये हार्ड बाल वाले हार्ड दिल वाले भी होते हैं। ये मजाक से हम नहीं कह रहे हैं, ये सही बात है। कई कई माताएं उनके केस बड़े कर्रे होते हैं, उनका दिल भी बड़ा कर्रा होता है। आप ये सब खगोल शास्त्र में लिखा हुआ है। जिनके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं वो बहुत ही कठोर वचन बोलने वाले होते हैं, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो। पर चैतन्य महाप्रभु की दंतावली बड़ी सुंदर थी, मुक्ता यानी कि सफेद श्वेत वर्ण एकदम चमकते थे, सुंदर दांत और सुंदर सुकुमल। जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में नीलांबर चक्रवर्ती भविष्यवाणी करते हैं, उनके शरीर के 32 लक्षण बताते हैं। 32 लक्षणों में बाल भी एक लक्षण है। बोले जिनके ये चर्म, ये खाल और ये बाल, जिनके हाड है, उनके दिल भी बड़े कठोर है। जिनकी नाभि गहरी है वो बहुत अच्छा आदमी है। जिनके नाखून लाल लाल है, देखो सबका नाखून, जिनके नाखून लाल है सब बढ़िया भक्त होंगे, जिनके नाखून सफेद है वो अच्छे भक्त नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। अरे यदि नहीं है ऐसे रगड़ रगड़ के लाल कर दो, दिक्कत क्या है? सो नाखून लाल होना चाहिए। ये सब खगोल, ये सब ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के अधर रंगा अधर है। जगन्नाथ जी के पास चले जाओ तो उनका अधर बिल्कुल लाल लाल है। और मुक्ता दयामय सुकुमल सर्व कलेवर, श्रीमस्तक के सुबलित चांचर श्रीकेश, सिंह ग्रीव गज स्कंध विलक्षण वेश। भगवान के केश और भगवान के वेश इतने सुंदर थे, जो कोई उनके केश और वेश को देखता था वो मोहित हो जाता था। गौरांग देखने में खूब गोरे थे और काले काले घुंघराले ऐसे लट्टे, ऐसा केस थे जो कोई देखता था। जब नाई उनको क्षौर कर्म करने गया वो तो बेहोश हो जाता था, उनका उस्त्रा नहीं चलता था। सुबह से शाम हो गई, महाप्रभु का क्षौर कार्य संपन्न नहीं हो पाता था। नाई कहता था धिक्कार है, आज का दिन को धिक्कार है जो ऐसे सुंदर केस पर मैं उस्तरा चला। उसके बाद शायद उस नाई ने किसी को और सर्वकर्म नहीं किया, छोड़ दिया। ये कठोर कर्म है। सवृंदावन दास ठाकुर कहते हैं श्री मस्तक के सुबलित चांचर श्री केश, भगवान के घुंघरल। ये साउथ अफ्रीका वाला नहीं था, ना 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 ना, उनका केस तो बड़ा जटिल होता है, इतना कठोर होता है कि वो सेविंग करा लेते हैं, उसमें पानी तक नहीं जाता। ऐसा वाला नहीं, हमारे भारत में जो केस घुंघराले केस देखना, बड़े एकदम सिल्की सिल्की टाइप का होता है, बहुत सुंदर। भगवान के केस सिंह ग्रीव, ग्रीवा कहते हैं ग्रीवा किसको बोलते हैं? इसको गर्दन को, हाँ ग्रीवा, हाँ शंख ग्रीव, कंबू ग्रीव। तो सिंह ग्रीव शेर का गला बहुत मोटा होता है, तो जिनका गला बहुत मोटा होता है वो बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर की तरह गला हो जाए, वो गला अच्छा नहीं है, मोटा मोटा गला मोटा होता है उसमें चिन्ह होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। सिंह ग्रीव गजस कंध और हाथी की तरह कांध है, मोटे मोटे कांध है, मोटा मोटा गला है और विलक्षण वेश, कोई भी देखता था वो ईश्वर मानता था। सुप्रकांड सिंह सुंदर हृदय, विशाल शरीर था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का विशाल शरीर था, 7-8 फीट लंबे थे। श्री विग्रह सुंदर हृदय और उनका हृदय जैसा वेश, जैसा सुंदर वेश ऐसा हृदय था। यज्ञ सूत्र रूपित ही अनंत विजय, और अपने वक्षस्थल पर यज्ञ सूत्र धारण किए हुए थे, वो यज्ञ सूत्र नहीं है, वो तो साक्षात अनंत शेषनाग उनके इसे को भूषण कर किए हुए विराजमान हुए थे। शील श्री ललाटे उर्ध सुतिलक मनोहर, आजानुलंबित दुई सुभुज सुंदर, और ललाट पट को सुशोभायमान करता था सुंदर तिलक। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा नियम था कि वो तिलक किए बगैर सभा में नहीं जाते थे, और वो सभा में कोई भी बालक तिलक किए बिना आता था उसको खूब डांट लगाते थे, बोले संध्या किए बिना तुम आए हो, जाओ पहले संध्या करो फिर पढ़ने आओ। बाकी चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत केवल साधुओं के लिए, हाँ ये हम कहना भूल गए, भगवान राम ने देखा, भगवान ने सोचा कि रामावतार में मैंने लोक धर्म का खूब प्रचार किया और कृष्णावतार में मैंने लोक धर्म और वेद धर्म और ईश्वर धर्म का खूब प्रचार किया, लेकिन मैंने साधु धर्म तो प्रचार नहीं किया, कैसे बाबा जी होते हैं इसका तो मैंने प्रचार नहीं किया। नरसिंह भगवान के रूप में आया, खूब खनकार, खूब दहाड़ मारी। बामन के रूप में आया, खूब दान मांगा। कृष्ण के रूप में बहुत रासलीला की। राम के रूप में खूब रोया, बन बन भटका, लेकिन बाबाजी कैसे हुआ जाता है उसका मैंने प्रचार नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण ये सोच करके स्वयं बाबाजी बन के आ गए, बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु एक साधु के रूप में, भगवान एक संत बन के आए हैं। ललाटे ऊर्ध्वपुंड्र, इसलिए वो सिखाते थे जाओ संध्या वंदन करो। जो कोई व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता था उनको पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, नहीं करते थे महाप्रभु। लेकिन हम खुद अनुभव करते हैं, भक्त लोग इसको उसका उल्लंघन कर लेते हैं, कई लोग तो खड़े खड़े गायत्री कर लेते हैं। मैंने देखा कई बार मंदिर में खड़े खड़े गायत्री करते गए। देखिए विपत काल में आपत काल में ये सब बातें सही है, लेकिन कोई काम नहीं है, हम वहां भगवान के पास खड़े हैं और गायत्री करने के लिए आपको मना किसने किया? आचमन करें, आसन लगाएं और गायत्री करें, और आप चैतन्य भागवत पढ़िए। यदि ये बात नहीं है फिर हमसे बोलिए। महाप्रभु डांट लगाते थे, अगर तिलक नहीं है, संध्या वंदन कोई भक्त नहीं करता था, कोई छात्र, उसको महाप्रभु कहते जाओ संध्या वंदन करके पढ़ने आओ, क्योंकि संध्या काल में चार काम करने से वो सब बेकार हो जाता है। यदि कोई भोजन करता है उनमें रोग बढ़ता है, यदि कोई विद्या का अध्ययन करता है विद्या उसका निष्फल हो जाता है, और यदि वो स्त्री सहवास करता है तो गर्भ रहता है तो हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यप पैदा होते हैं, असुर पैदा होता है, और सो जाता है तो उसकी विस्मृति हो जाती है सब कुछ। आहार, निद्रा, शयन और भोजन ये नहीं करना, हाँ और मैथुन ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चार क्रिया तो बिल्कुल निषेध है संध्या काल में। इसलिए महाप्रभु सिखाते हैं, ललाट में स्वयं धारण करते तिलक, दूसरों को भी बताते हैं। योगपट छांदे वस्त्र करिया बंधन, बामौर माझे थुई दक्षिण चरण। योगपट छांदे, योगपट छांदे माने जैसे हम लोग धोती पहने, त्रिकच्छ है, एक कच्छा उधर है, पीछे और एक है और बाएं तरफ एक है, इसको त्रिकच्छ। और बाएं जांघ पर अपने दायां पैर को रखे हैं, इसको कहते हैं, देखिए बाम उरु माझे थुई दक्षिण चरण। आप थोड़ा इधर आइए, उसको उधर को हटा दीजिए, नहीं मेरे पास नहीं, वहीं बैठिए, उधर को मुंह करके बैठिए, हाँ उस पांव को इधर रखिए जांघे पर, हाँ ऐसे चैतन्य बाबा, हाथ रखिए उधर, देखिए बोलिए गौरांग महाप्रभु की। पर समस्या इतनी कि उनके घुंघराले बाल थे आपके, है नहीं? तो इस ने थोड़ा बैठे ना, पैर को रखिए उधर, माझे 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 माने बीच में, नहीं बीच में, बाम उरु माझे थुई दक्षिण चरण। हाँ, ये बाम उरु, इसे उरु कहते हैं, और माझे पे माझे, थोड़ा और पैर को उधर हटाइए, हाँ थोड़ा और सीधा होकर बैठिए, सीधा, पेट ज्यादा हो गया थोड़ा ऐसे, हाथ इधर रखिए, उधर देखिए, हाँ ऐसे चैतन्य महाप्रभु बैठते थे, और ये सारे छात्र समाज अब जाकर बैठिए, नहीं उधर ही बैठिए। सबामो उरु माझे थुई दक्षिण चरण, करिते आछे ने प्रभु शास्त्रे बाखान, हय नय करे नय करे न प्रमाण। शिष्यों के साथ शास्त्र के वार्तालाप से बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु व्यस्त थे। सुभाषितानी में एक श्लोक आता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो पंडित विद्वत जन होते हैं उनका समय शास्त्रादि चर्चा में व्यतीत होता है। और एक उसका दूसरा पद क्या है, हाँ व्यसने न च मूर्खाणाम ना, हाँ व्यसने न च मूर्खाणाम निद्रया कलहे न वा। बहुत अच्छा, माता जी के लिए एक बार ताली बजाइए। हाँ, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बोले दो रूप से समय दोनों के व्यतीत होते हैं। बोले विद्वान व्यक्ति का समय व्यतीत होता है काव्य शास्त्र के अनुसंधान में और चर्चा में, और मूर्ख लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है, खा के, और खा लिया तो सो के, तो सो के उठ गया तो झगड़ा करके, फिर झगड़ा करके थक गया तो फिर खा लिया, फिर खा लिया तो फिर सो लिया, बस सो करके खा करके और झगड़ा करके बीत जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न बा। पर चैतन्य महाप्रभु का ऐसा बीतता है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब अपने दिव्य भाव में ये रूप वर्णन करते हैं, इसलिए कि ये ध्यान के योग्य है। मनी मन ध्यान करिए, महाप्रभु गंगा के तट पर ऐसे बैठे हुए हैं, घुंघराली लट्टे हैं, मंद मुस्कान है, लाल लाल अधर है, मुक्ता पंक्ति के समान दसन हैं, और उनके उनके दिव्य दृष्टि हैं, विशाल शरीर है, और शरीर पर पीताम्बरी शोभायमान हो रही है, और वक्षस्थल पर यज्ञ सूत्र शोभायमान हो रहे, वाह क्या अपूर्व शोभा है, ये ध्यान योग्य है। इस प्रकार महाप्रभु विराजमान है, उसी समय भगवान की माया शक्ति से प्रेरित होकर दिग्विजय पंडित वहां आकर के पहुंचता है। पूछा, ये निमाय पंडित हो? शिष्यों ने कहा, हाँ जी ये निमाय पंडित जी है, आइए। तो चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते हैं, निमाय पंडित का स्वागत, आइए आइए, बड़े मधुर शब्दों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। ईश्वर स्वभाव शक्ति यही मत है, देखीते ही मात्र ताने साध्वस जन्मय। पर जब निमाय पंडित का नाम सुना, दिग्विजय पंडित के मन में थोड़ा डर पैदा हुआ। कविराज गोस्वामी कमेंट करने में नहीं भूलते हैं, ईश्वर स्वभाव शक्ति यही मत है। बोले भगवान की ऐसी शक्ति होती है, जो कोई ईश्वर के सामने आता है उनकी शक्ति उनसे छोटी मालूम पड़ती है। तो इस प्रकार से जब दोनों का मिलन हुआ, दोनों बैठे, चैतन्य महाप्रभु ने खूब स्वागत किया, खूब प्रणाम किया और उनकी खूब बड़ाई करी। मैंने सुना आप दिग्विजय पंडित, आपका नाम केशव भट्ट है, मैं तो के अबोध बालक हूं, आपका पुत्र के समान भी नहीं हूं, आपके दासों के दासों के दासों का दास मैं हूं, मेरा बड़ा भाग्य है आप जैसे महान विद्वान का मैंने दर्शन पाया, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा मन विद्या में लगा रहे। इस प्रकार से उनका संभाषण करके बैठे और दोनों ने गंगा को नमस्कार किया, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आसन दिया, एक आसन पर वो बैठे, एक आसन पर चैतन्य महाप्रभु बैठे, और महाप्रभु ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले प्रभु गंगा बह रही है, साक्षात भगवती गंगा है, ब्रह्म द्रव है, आप कुछ पद रचना करके हमें सुना सकते हैं? हमारी छात्र मंडली बैठी है, बड़ा आनंद आएगा, इस संध्या का हम सब भरपूर उपभोग कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है निमाई पंडित, अब हम कहते हैं सुनो। आंधी तूफान की तरह वो पदों की रचना करने लगे, सारे शिष्य लोग विस्मयभूत होकर उनकी पद रचना की शैली को देख रहे थे। जैसे आंधी तूफान चलता है वैसे ही श्लोकों की रचना चल रही थी। मित्रों, एक श्लोकों को सटीक से उच्चारण करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आंधी तूफान की तरह वो पंडित जी श्लोक कह रहे थे। प्रभु कहे तुम्हार कवित्व नहीं सीमा, है ना नहीं जहां तुम्हें ना कर वर्णन। हे केशव भट्ट जी, आपके कवित्व की कोई सीमा नहीं है, ऐसी कौन सी विद्या है जिसका वर्णन नहीं कर सकते है। गंगार महिमा किछु करह पठन, सुनिया सवार होक पाप विमोचन। गंगा गंगा सुन लेने मात्र से पाप विनष्ट हो जाता है, आप कुछ गंगा की स्तुति करिए। सही क्षणे करिवारे लागिला वर्णन, उसी समय केशव काश्मीर वर्णन करने लगे। द्रुत जी लागिला विप्र करिते वर्णन, कत रूपे बोले तार के करिते सीमा। कत मेघ सुनी जेन करे गर्जन, एई मत कवित्व गंभीर जे पठन। वो उनकी वाणी में बड़ी गंभीरता थी, शब्द शैली बड़ी बहुत ही भली प्रकार से वो कर रहे थे। ये सब सुनकर के जो उनके छात्र थे, जो छात्र मंडली थी, वो विस्मयभूत हो रही थी। वो इतनी विद्वत्ता, धारा प्रभाव श्लोकों की संरचना और पाठ, बिल्कुल व्याकरणगत संगति और व्याकरणगत संस्कार युक्त शब्दावली, ये सब सुनकर के विद्वानों का बड़ा हर्ष होता है। और उनके छात्र मंडली तो सभी विद्वान वहां उपस्थित थे, सबके मन में अपार हर्ष हो रहा था। जिहाय अपने सरस्वती अधिष्ठान, जे बोलाए से है अत्यंत प्रमाण। और साक्षात जिहा पर सरस्वती विराजमान करती थी, और जो भी भट्ट जी बोलते थे वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होते थे। हे न विद्यावंत नाही बुझी वे कजे, सहस्र सहस्र जत प्रभु शिष्य गण, अवाक हैला सबे सुनिया वर्णन। तो शिष्यों में कहने लगे राम राम नारायण नारायण, हे गोपाल गोपाल, ऐसी विद्या ऐसी वैदग्धि ऐसा पांडित्य, राम 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 अद्भुत स्मरण शिष्यगण, मनुष्य रे एमत की स्फुरे कथन। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसी विद्या ऐसी प्रगल्भता ऐसा संस्कृत ऐसा उच्चारण। जैसे मान लीजिए आप एक शब्द कहोगे और पांच मिनट के बाद शब्द कहोगे, क्या आपको पंडित माना जाएगा? नहीं, आप कहोगे श्री वृंदावन, श्री वृंदावन के उत्तर दिशा में जमुना जी प्रवाहित बह रही है। ये कोई पांडित्य थोड़ा ही है, ये क्या पंडित है? पंडित तो ऐसा ऐसा कहेगा कि उनके उनका समय का भी एक एक निश्चित हिसाब किताब रहता है कि कितने समय में कितने शब्द प्रयोग करना है। वो है सब, पठन के भी नियम है, कई कई लोग पढ़ते हैं ऐसे ऐसे एकदम हिलचुल। इसको पठन नहीं माना जाता, इसको सिर कंपी कहते हैं, सिर हिला करके पढ़ता है, नहीं चुपचाप जो पढ़ता है, जो ठीक से नहीं पढ़ता वो पठन के भी कई सारे दोष है। ये सब पंडिताई में ये सब देखा जाता है। शब्दावली आपकी सही होनी चाहिए। आप कहोगे श्री वृंदावन धाम के उत्तर दिशा में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना जी प्रवाहित हो रही है, ये तो थोड़ा बनता है। और कोई विद्वान और कोई और प्रकार से वो इसका वो शब्दावली का प्रयोग कर सकता है। तो शब्दावली और समय का ज्ञान ये सब होना, ये पंडिताई का एक लक्षण है। और भाषा में संस्कार ये होना चाहिए। आप हिंदी बोल रहे हैं, आपने कहा मेरा पत्नी भाग गया, ये क्या कह दिया? वो तो सारी श्रोता उठ करके चली जाएगी। हिंदी में पत्नी का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। आप कहोगे मेरी पत्नी कहां चली गई है, अब वहां आप यहां बैठकर कहोगे मेरा पत्नी भाग गया, सब उठ के चले जाएंगे। इसलिए विद्वान मंडली जो है ये शब्द संयोजना, समय निर्धारण ये सब जानते हैं। तब ये शिष्य कहते हैं राम 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 राम, ऐसी वैदिक्धि, ऐसा पांडित्य, जगते अद्भुत जत शब्द अलंकार से यही कवित्व वर्णन नहीं आर, सर्वशास्त्रे महाविशारद जे जे जन हेना शब्द ता सवारे बुझीते विषम। अरे ऐसे ऐसे शब्द ये बोलते हैं, इनको समझना भारी कठिन है। इस प्रकार से जब वार्तालाप हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा महाराज आपका पांडित्य, आपके पांडित्य की सीमा नहीं है जी। मुझे एक श्लोक समझ में नहीं आया। नीमाई पंडित की बात सुनकर केशव काश्मीरी कहते हैं पंडित जी कौन सा श्लोक समझ में नहीं आया ना, वो जो 64वां श्लोक है ना वो समझ में नहीं आया। तब ये पंडित कहते हैं धारा प्रभाव मैंने 100 श्लोक गा लिए, इनमें से ये 64वां श्लोक को कैसे याद रख लिया, कैसे याद रखा। तब उसने वो स्वयं कवि विस्मित हो जाता है। तो कवि कहता है भाई निमाय तुमने कैसे याद रख लिया। हाँ कहाँ गया उस लोग। हाँ प्रभु कहे देवेर वरे तुमी कविवर, ऐछे देवेर वरे कह हय श्रुति धर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा पंडित जी जैसे आपको सरस्वती ने वरदान दिया है आप कवि बन गए, विदग्ध बन गए, वैसे भी भगवान किसको वरदान दे सकते हैं कि वो स्मृति उसकी बहुत विलक्षण हो जाए, श्रुतिधर बन जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस सरस्वती कृपा से आप कविवर हो गए उसी भगवती सरस्वती कृपा से कोई स्मृतिधर भी बन जाए, आप कहिए। तब धीरे धीरे इनके मन में थोड़ा थोड़ा भय होने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा बोलो श्लोक। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक श्लोक कहा महत्वम गंगायम सततम आभाति नितराम यदे सश्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुरई नरेरर्च चरणा भवानी भर्तृ या शिरसि विभवती अद्भुत गुणा। जब महाप्रभु ने ये श्लोक गाया तो सारे शिष्य भी आश्चर्य हो गए, हमारे अध्यापक उनमें भी ऐसी स्मृति है, अरे हम तो देख रहे थे कभी इस तरह से गा रहा था, पर हमारे सर हमारे अध्यापक इन्होंने 64वां मंत्र को याद रख लिया। दोबारा गाइए। तब निमाय पंडित दोबारा गाते हैं महत्वम गंगायाम सततम आभाति नितराम यदे श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगाम द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुरई नरेरर्च चरणाम भवानी भर्तृ या शिरसि विभवती अद्भुत गुणा। भगवान इसी श्लोक का अर्थ करिए। और हमको तो लगता है कि इस श्लोक में थोड़ा बहुत कुछ ऐसी जो रचना हुई है इसमें थोड़ी गलती रह गई। तब तो उस पंडित को ऐसा अहंकार का ठेस पहुंचा, बोला निमाय अरे तुमको अलंकार नहीं आता, तू धातु पढ़ाता है और हमारी रचना में दोष ढूंढता है, जो मैंने कह दिया उसको वेद का सार है। निमाय पंडित ने कहा हाँ ये वेद का सार है, इसीलिए तो अर्थ करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप करिए अर्थ। तो उन्होंने इसी श्लोक का अर्थ किया, महाप्रभु ने सुना। तो महाप्रभु ने कहा पंडित जी यदि आप बुरा नहीं मानेंगे तो कुछ बात मैं निवेदन करूंगा। नहीं नहीं बोलो क्या कहना चाहते हो, वो तो अहंकार से एकदम फूलता था। तो महाप्रभु ने कहा वैसे तो विचार करेंगे इसमें अनंत दोष है लेकिन मोटा मोटा 5 दोष है। बोले विचार करेंगे तो श्लोक में अनंत गुण दोष है लेकिन मोटे मोटे इसमें 5 है।
व्याकरण तुम्हें नहीं पढ़ो अलंकार, तुम्हें की जानी में यही कवित्व रसार, इसको कहते अहंकार की भाषा। अरे तुम व्याकरण पढ़ाने वाले व्याकरण हो, तुमको क्या अलंकार का ज्ञान है, तुम नहीं समझ सकते है। प्रभु कहे अतएव पूछिए तुम्हारे विचारिया गुण दोषो बुझा हमारे, बोले इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, आप समझ तो आपको हमको समझा दो। नाई पढ़ी अलंकार करियाची श्रवण ताते यही श्लोके देखी बहु दोषो गुण, बोले पंडित जी मैंने अलंकार का पठन पाठन अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैंने गुरु जी से सुना है, गंगादास पंडित से तो हमने पढ़ा है सुना है, और जो मैंने गुरु जी से अध्ययन किया है उसके अनुसार जब हम विचार करते हैं इसमें अनेक गुण दोष है, अनेक हैं। ना ही पढ़ी अलंकार करियाची श्रवण ताते यही श्लोके देखी बहु दोष गुण। कवि कहे कह देखी कौन गुण दोषे, प्रभु कहे ने कही सुनो ना करिए रोसे, बोले क्यों इतना गुस्सा करते हो, सुनिए धीरज के साथ सुनिए। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे हमने जैसे कहा वो कहेंगे पंडित जी, यदि आप रुष्ट नहीं होंगे तो कुछ निवेदन करना चाहूंगा, ये शुद्ध भाषा है, क्यों गुस्सा करते हो, ये तो अशिष्ट भाषा है। पर जब चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं वो कहेंगे पंडित जी आप यदि रुष्ट नहीं होंगे, यदि आप इस दास को कुछ आज्ञा करेंगे निवेदन करने हेतु तो आपके चरणों में हम दो शब्द निवेदन करेंगे, ये तो पंडित ही भाषा है। हाँ ठीक है बोलो। वो तो अहंकार में एकदम चूर चूर था। प्रभु कहने कही सुन ना करिए रोष, कवि कहे कह देखी कौन गुण दोष, बताओ कौन इसमें गुण है क्या दोष है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा पांच दोष यही श्लोक के पंच अलंकार, क्रमे क्रमे कही सुन करह विचार, बोले भगवान इसमें मैं पांच दोष बताता हूं और पांच गुण भी बताता हूं, ऐसा नहीं कि खाली दोष है, और आप इस पर विचार करो, यदि मैं गलत कहता हूं तो मुझे दंडित करो। खुली चैलेंज, देखो कितने बढ़िया तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभिमृष्ट विधेयांश दुई ठाई है विरुद्ध मत्ति भग्न क्रम पुनरोक्ति दोष तीन, अभिमृष्ट विधेयांश दुई ठाई चिन्ह विरुद्ध मत्ति भग्न क्रम पुनरोक्ति दोष तीन। तो महाप्रभु ने इसमें चार दोषों का नाम देते हैं, एक दोष का नाम होता है अभिमृष्ट विधेयांश, अभिमृष्ट विधेयांश नाम याद रखो अभिमृष्ट। देखो इसी श्लोक के ऊपर एक छोटी सी कथा कहता हूं। हम गए थे मायापुर, मायापुर में हमारे कोई ज्यादा जान पहचान नहीं है, हमको नाम हट्ट में रूम दिए थे, मायापुर का कोई भक्त है इधर, हाँ नाम हट्ट के रूम दिए थे, नाम हट्ट के रूम बड़े अच्छे नहीं थे, हम वहां सोए हमारे शरीर में खुजली हो गई, हमको बहुत कष्ट हुआ, बड़े मन दुख से हम वहां बंसी भवन जो लाइफ मेंबर डिपार्टमेंट का उसके सामने हम ऐसे ही थोड़ा भ्रमण कर रहे थे, मन ही दुख होता था, हे महाप्रभु अब कोई थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए रह जाए, क्या दुख है। जब मैं भ्रमण कर रहा था उसी समय ये टमटम जो है ना, ये टमटम पर दो व्यक्ति बैठे थे, दो विभूतियां बैठी थी, एक भद्रचारु प्रभु और एक मायापुर के ड्रामा के डायरेक्टर जो है, क्या नाम है उनका, प्रवीर कृष्ण जी, वो बैठे थे। भद्रचारु प्रभु हमको पहचानते हैं, तो मैं जाकर के पहुंचा और उनका चरण स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया। तो भद्रचारु प्रभु ने कहा कि पंडित जी कब आए, तो मैंने कहा प्रभु जी मैं काल आया, ना सब ठीक ठाक कुशल मंगल, मैं कह बिल्कुल कुशल नहीं है, मैंने क्या है, मैं कह शरीर में खुजली है। बोले कहाँ रहते हो, मैं कह नामहट में दे दिए, वो रूम वूम ठीक नहीं है, कल रात को पता नहीं कौन बेडशीट थी, हम सो गए, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, पर ये सुन करके चुप हो गया, वैसे उनके हाथ में क्या था। सो मैं देखा थोड़ी थोड़ी धूप थी, सर्दी के दिन थे, तो मैं खड़ा हुआ और यही श्लोक की व्याख्या भद्रचारु जी कर रहे थे, इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे थे और मैं खड़ा रहा। तो भद्रचारु जी को ड्रामा करना था, सॉरी वो प्रवीर कृष्ण प्रभु को,
और भद्रचारु प्रभु को प्रभु जी उनको समझा रहे थे। भद्रचारु प्रभु का संस्कृत में कोई बहुत ज्यादा ज्ञान तो बहुत ज्यादा है नहीं। मैं आधा घंटे तक खड़ा रहा, खड़े होने के बाद तो मैंने ऐसे निवेदन, मैंने उनका भी चरण छोए। तो इन्होंने कहा, भद्रचारु प्रभु ने कहा, इनको जानते हो? तो इन्होंने कहा कि ये वृंदावन, ऐसे हमारा नाम बताया। सो वही हम खड़े रहे, खड़े रहने के बाद आधा घंटा जब बीता तो भद्रचारु प्रभु से कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो थोड़ा इसी श्लोक पर मैं थोड़ी चर्चा करूं। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ करो। तो इन भद्रचारु प्रभु ने प्रबीर कृष्ण जी से कहा, हाँ ये इनको हम जानते हैं, ये पंडित जी है, ये करेंगे। तो मुझे आधा घंटा समय लगा। अब मैं जानता था कि वो जो बोल रहे थे प्रबीर कृष्ण जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ठीक से अगर क्लियरिटी नहीं है, हाँ जो व्यक्ति स्वयं नहीं समझता वो दूसरों को नहीं क्या समझा सकता है, तो स्वयं समझे तो समझा पाए। सो हमें जब सेवा का अधिकार मिला तो मैं कहा ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने पूरी ताकत लगाई, भगवान गौरांग महाप्रभु का स्मरण किया और इस श्लोकों को समझाने का मैंने प्रयत्न किया। मैं जैसे जैसे समझाता था और प्रवीर कृष्ण जी की आंखों से हमको पता चलता था कि इनको समझ में आ रहा है क्लियर। जब श्लोक खत्म हो गया तो उन्होंने कहा, अरे रमाकांत जी 20 साल हो गए इस मायापुर में, किसने तो श्लोक समझाया नहीं। उनके यही लफ्ज थे, मायापुर के भक्त भी, यहां कोई मायापुर का होगा उनसे ही पूछ लीजिए, बोले 20 साल हो गए 30 साल हो गए ये श्लोक तो किसी ने नहीं समझाया। तो उनका श्लोक, उन बहुत खुश हो गए। बहुत खुश होने के बाद उनके सामने बंसी भवन के सामने एक जूस वाला बैठता है, आप जानते हैं, उनको बुलाया, बोला मुझे पूछा आप कितने दिन रहेंगे, मैं कहा 4 दिन रहूंगा, बोले जो जूस पियेंगे उनको देना, एक फायदा तो कम से कम हुआ, बोले जितना जूस ये पिएंगे और जितने बार पिएंगे उनको देना, जूस दे दिए। तुरंत बोले आप कहां ठहरे नामहट्ट में, मैं कहा वहां तो बहुत बेकार है। तो तुरंत वो श्यामानंद प्रभु जो है ना, हाँ ये सब हमको कैसे पता चला, उसी घटना से पता चल गया, बोले श्यामानंद इधर आओ, प्रभु जी के लिए एक रूम रखो। तो एक रूम तुरंत किया, मैं कहा मेरे साथ असिस्टेंट सेवक है उनके लिए एक रूम, दो रूम दे दिए। गर्म पानी की पूरी व्यवस्था किए, भोजन कहाँ करना है, मैं कहा वो गदा बिल्डिंग में हम भोजन नहीं करेंगे, एक भक्त ने डाल दिया सब्जी, हमारे धोती खराब हो गई बोले यहाँ पे भोजन करना है VIP में। हर प्रकार से भोजन रहन बसन हर प्रकार से व्यवस्था हो गई। तो भद्रचार्य प्रभु ने कहा हमारे घर पे आ जाइए शाम को डोसा खाने के लिए। तो मैं कहा गौरांग महाप्रभु से कहा, प्रभु एक श्लोक में इतना फायदा है और 2-4 श्लोक मिल जाए फिर तो फायदा ही फायदा है। तो इसी एक श्लोक की बात हम कहे, वो कथा प्रसंग में हमने कह दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने जब समझाया, बोला देखिए तुम्हारे इस श्लोक में अलंकार और दोष इसमें 5 है। बोले क्या है? बोले एक दोष का नाम है भग्न क्रम। कहां चला गया? हाँ, भग्न क्रम नहीं, अभिमृष्ट विधेयांश दुई ठाई चिन्ह, ये अभिमृष्ट विधेयांश दो जगह में है, विरुद्धमति भग्न क्रम और द्विरुक्ति, माने दो बार कहना, ये भी दो जगह में है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोले कहां है इसको समझाओ, खाली कहने से तो काम नहीं बनेगा, अब उनको समझाना पड़ेगा। अब देखो कैसे समझाते हैं, समय तो नहीं है, मैं थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। अभिमृष्ट विधेयांश शब्द का अर्थ होता है, व्याकरणगत एक रचना होती है, अनुवाद और विधेय दो शब्द आते हैं। जो वस्तु को हम जानते हैं उनको संस्कृत में अनुवाद कहते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं उनको हम विधेय कहते हैं, है ना। तो रचना का ये नियमन यही है, पहले अनुवाद कहा जाए और बाद में विधेय कहा जाए। लेकिन समस्या इनकी यहां हो गई, इन्होंने विधेय पहले कह दिया और अनुवाद बाद में कहा, यह दोष हो गया। क्या विधेय अनुवाद? महत्वम गंगाया। देखो इसी शब्द से आप समझ सकते हैं, गंगा शब्द जो है अनुवाद,
और महत्व शब्द जो है ये विधेय। विधेय किसको कहते हैं? विधेय उसको कहते हैं जो आप जानते नहीं हो। जैसे महत्व है, महत्व के बारे में आपको जानकारी नहीं है। किसका महत्व है, काहे का महत्व है ना, इसमें क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। इसलिए महत्व शब्द को विधेय कहते हैं। और गंगा शब्द, गंगा कहने से तो आपको समझ में आ गया ना कि गंगा नदी है ना। तो गंगा शब्द है अनुवाद, विधेय शब्द है महत्व। इनको कहना चाहता कि गंगायाः महत्व, पर इन्होंने कह दिया महत्वम गंगाया। ये दोष हो गया, रचना में दोष हो गया। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कि तुम आप लोग ये समझ गए, आप लोगों को पूरा पूरा नहीं समझ में आया होगा। आ गया तो उदाहरण देके समझाओ, फिर हमको समझाओ। हाँ, जो मैंने कहा उसको मत कहो, दूसरा को समझने का अर्थ होता है, व्यक्ति दे सकता है उदाहरण। हाँ, बृहत मृदंग। हाँ ठीक है, बृहत मृदंग अच्छा है। तो इसमें अनुवाद कौन है, बृहत कौन है, विधेय कौन है? हाँ, तो ये होना क्या चाहिए, मृदंग बृहत। भाई बृहत क्या बृहत है? मृदंग बृहत है या हारमोनियम बृहत है या मकान बृहत है, क्या बृहत है? बृहत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर मृदंग तो कहने से सबको समझ में आता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दे दिया। पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण कहने से समझ में आ गया, पंडित कहने से समझ में नहीं आया। काय का पंडित, किस मार्ग में पंडित, कौन सी विद्या में पंडित? कहना चाहिए कि ब्राह्मण पंडित है, लेकिन ये कहना पड़ता है कि पंडित ब्राह्मण। तो ये सब अभिमृष्ट विधेयांश का दोष है। आपने कह दिया कि महत्वम गंगायाम, यहां पर दोष हो गया। महत्वम गंगायाम सततम आभाति नितराम, तो कहते हैं इसमें अलंकार तीन जगह में है। देखिए, महत्वम गंगायाम सततम आभाति नितराम, इसमें पांच बार त शब्द आया है। आया कि नहीं आया? त पांच बार आया है। पर दूसरी लाइन जो कहते हैं कि द्वित यदेशा श्री विष्णु चरणों कमलोत्पत्ति सुभगा, इसमें कोई त नहीं कि र नहीं है। पर तीसरी लाइन जो कहते हैं द्वितीय श्री लक्ष्मी रिवा सुरई नरई रच चरणा, इसमें र का अलंकार है। और भवानी भर्तृ जाशिरसि विभवती अद्भुत गुणा, इसमें भ का अलंकार है। ऊपर त अलंकार है, तीसरी लाइन में र अलंकार है, चौथी लाइन में भ अलंकार है, पर दूसरे लाइन में कोई अलंकार नहीं है। इसको भग्न क्रम कहते हैं, माने जो क्रम में आप श्लोक ले रहे थे उसका क्रम आपका टूट गया। आप कैसे पंडित हो? पंडित आप नहीं हो। एक तो हो गया अभिमृष्ट विधेयांश, एक हो गया भग्न क्रम, दूसरा हो गया विरुद्ध मति। विरुद्ध मति क्या है? विरुद्ध मति के रूप में कहते हैं, कहते भवानी भर्तृ शिरसि विभवति अद्भुत गुणा। भवानी भर्तृ माने, भवानी शब्द का अर्थ होता है भवानी भव की पत्नी, पर भवानी भर्तृ शब्द का अर्थ होता है कि शिव की पत्नी का पति, शिव की पत्नी का पति। अरे शिव की पत्नी तो शिवा है, भवानी है, आपने भवानी कह दिया। भवानी भर्तृ कहने से इसका अर्थ ऐसा ही हो जाता है कि शिव की पत्नी का पति हो, तो महाबवंडर है ये। ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया। आई समझ में बात? भवानी भर्तृ, जैसे हम कहेंगे ब्राह्मणी के भर्तार को दान दो। अरे ब्राह्मणी शब्द का अर्थ होता है किसी ब्राह्मण की पत्नी, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का भर्तार ये शब्द का अर्थ होता है कि ब्राह्मणी का कोई दूसरा पति है, तो ये बहुत गलत अर्थ होगा ना। तो भवानी भर्तृ शब्द का अर्थ हो जाएगा कि शिव के अतिरिक्त भवानी का कोई दूसरा प्रेमिक है क्या? ये बहुत भारी दोष है, ये बहुत गलत बात ये। अच्छा ये बताइए, मायापुर में इसकी चर्चा ऐसी हुई होगी? कितने लोग कितने साल मायापुर में रहे? नहीं, हमारा गारंटी है।
उसके जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसके बाद और चर्चा हुई कि नहीं होगी, आप एक काम करो आज फोन करके पूछो, जो 20 साल का भक्त होगा उनसे पूछो, नहीं हुआ होगा। भवानी भर्तृ कि शिव की पत्नी का पति, देखो ना शिव की पत्नी का पति, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब कोई दूसरा पति है उसका, ये भारी गलती आ गई इसमें। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल जिसको कहते हैं बाल से खाल निकालना है, वो ऐसे जानबूझ करके कर रहे हैं, वैसे उसमें दोष वोष कुछ नहीं आगे कहेंगे। बोले जानबूझ करके कर रहे हैं। बोले द्वितीय श्री लक्ष्मी, अच्छा श्री लक्ष्मी आपने कहा, अरे श्री माने तो लक्ष्मी और लक्ष्मी माने ही लक्ष्मी, अरे श्री लक्ष्मी क्यों कहा आपने, श्री लक्ष्मी क्यों कह दिया? इसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक तो आपने अभिमृष्ट विधेयान से दोष दिया, दूसरा आपने दे दिया विरुद्ध मति, ये भवानी भर्तृ दे दिया, तीसरा आपने दे दिया भग्नक्रम माने अलंकार का यहां प्रयोग किया वहां प्रयोग नहीं किया, और चौथा दोष आपने दे दिया पुनरुक्ति, जैसे आपने कह दिया कि भवानी द्वितीय श्री लक्ष्मी कि दूसरी कोई लक्ष्मी दूसरी कोई श्री, इस प्रकार से पुनरुक्ति दोष आ गया इसमें। ये चार पांच दोष हैं, आप विचार करो। जब उस पंडित ने सुना तो उनके बुद्धि खत्म हो गई, बालक हंस रहे थे, महाप्रभु ने कहा शांति, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं अपमान करेगा, कोई नहीं अपमान करेगा। हमारे ये सब कई अनुभूतियां हम कह रहे हैं, पहले जीवन में हम शब्द कहते थे, इस समय हम अनुभव कहते हैं। एक बार हम संकीर्तन में प्रचार करने के गए, एटा, एटा नाम सुना यूपी का, एटा, रात्रि को खूब बारिश हुई, हम गए एक जगह में, एक आर्य समाज का विद्यालय था, हम चले गए उधर विश्राम लेने के लिए, वहां के जो हेड पंडित था, हेडमास्टर, नहीं 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 यहाँ नहीं रुक सकते, चलो भागो यहाँ से। हम गए, हम आपके बच्चे जैसे ही, आप देखिए सब आपके छोटे छोटे बच्चे, मैं 20 साल पुरानी बात कहता हूँ, तो आप थोड़ा संध्या हो गई है, खूब वर्षा है, अंधड़ चल रहा है, कहाँ जाएंगे? नहीं आप बिना परमिशन से आए, भागो यहाँ से, आप लोग गीता बेचते हो, गीता पढ़ते हो? हमको मौका मिल गया। हमारे बस में एक लड़का था, उसका नाम था विक्रम ठाकुर, उसने कहा क्यों नहीं गीता पढ़ते, खाली गीता हम थोड़ी बेचते हैं, गीता पढ़ते हैं हम लोग, ना बताओ गीता, ना हमारे प्रभु जी पढ़ते। उसने कहा बुलाओ तो हमारे प्रभु जी को, तो प्रभु जी गए, तो उनके पास उनके 5-7 शिष्य बैठे हुए थे, तो मैं भी गया, तो हमसे पूछा गीता पढ़ते हो? तू तकड़ कर गया, गीता 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 पढ़ता है? तो मैंने कहा सर पढ़ते हैं गीता। अरे तुम लोग केवल इस्कन वाले गीता बेचते हो? मैंने कहा नहीं गीता पढ़ते भी हैं। तो वो तो जितना अपमान किया ना हमको भी गुस्सा आ गया था, मैंने कहा भले ही यहां से चले जाएंगे लेकिन इनको कुछ सबक सिखा के जाएंगे। सो चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत सारा संयम में काम किया, हम तो उतने संयम में काम नहीं किए। तो मैंने कहा देखिए 10 मिनट हो गए आप अपमानित करते, आप अपमान कर ही रहे, संस्था का अपमान, हमारा अपमान, ये अपमान, अच्छा हमने क्या गुनाह कर दिया, केवल आपके अनुमति के बगैर आ गए, और आपके सिक्योरिटी है, हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, थोड़ी हमको जगह दे दीजिए, और आप कहेंगे चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं ना, नहीं तुम लोग गीता हीता कुछ नहीं पढ़ते हो, केवल धंधा करते हो, ये तो नॉर्मल लोग यही कहते हैं धंधा करते हो। मैं कह नहीं सर हम लोग गीता अभ्यास करते हैं। क्या गीता आपको याद है? वो भी अहंकार भरी से कहा क्या गीता आपको याद है? मैं कहा आप कुछ भी पूछो, मैंने भी ऐसे कह दिया। मैं कहा सर देखिए हम आपके छात्र के समान है, हमारी शर्त रहेगी, क्या शर्त रहेगी, इसके साक्षी है हरिविजय वगैरह साक्षी है, यदि मैं गीता बता दूंगा तो आपकी दया के बिना हम यहां रहेंगे, हम रहेंगे पर आपकी दया से नहीं रहेंगे, और यदि हम नहीं बता पाएंगे तो हम यहां से भाग जाएंगे, आपसे पूछेंगे नहीं, भाग जाएंगे हम। अब पूछिए, हमको तब छाती में मजबूती थी, हमको पहला अध्याय याद था, दूसरा अध्याय याद था, तीसरा अध्याय, 7, 8, 9, 12 13 14 15 16 और भी बीच बीच में थोड़ा इतनी याद, अध्याय तो बिल्कुल जलवत तरल याद थे, अभी थोड़ा थोड़ा हम भूल रहे हैं। सो इतना सारा विश्वास हमको होगा, मैं कि ये पूछेगा तो कहाँ तक पूछेंगे, तो हम भी ठाकुर जी को स्मरण किया, प्रभु आप इस विपत्ति से हमारा उद्धार करो। जैसे अर्जुन ने संकल्प कर दिया कि इनके बेटा ला करके दूंगा, प्रभु इतनी बड़ी बात है, आप अपने भक्तों की लाज तो बचाइए, हमारी लाज भी बचाओ। मैंने कहा पूछिए आपकी मर्जी जहां से। उन्होंने कहा दूसरे अध्याय बोलो। अब हम तो वही चाहते थे, हम तो वही चाहते थे। मैंने धारा प्रभाव बोला, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजोष्णम अस्वर्गम अकीर्ति कर्मार्जुन क्लैव्यम मास्म गम पार्थ नैत्यत्व प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौवल्यम त्यक्त तिष्ठो परम तपह इत्यादि 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 करके कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृछामि त्वम धर्म सम्मूढ़ चिता यत्श्रेय श्यानिश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम इत्यादि श्लोक जो पहुंच गए उन्हें रुको। मैंने कहा और चाहिए न, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। तो उनके जो चेले सब थे उन लोगों ने ताली बजा दिया। मैं कहा नहीं नहीं ताली मत बजाओ, रुको। मैं कहा सर हमारी शर्त थी हम भी आपसे पूछेंगे, हम आपकी दया से नहीं रहने वाले, हम किसी की दया अनुकंपा में नहीं रहते, अपने बलबुते पर रहेंगे। मैंने कहा 15 अध्याय के 7वां श्लोक बोलो, ये बहुत ही फेमस श्लोक है हमारी इस्कॉन के भक्तों के लिए, कोई बड़ा श्लोक नहीं है। मैंने कहा 15:7 बोलो, 13:24 बोलो, 7:8 नंबर बोलो। 2-4 श्लोक में धड़ाधड़ करके पूछा काहे को बोल पाएंगे, हमारे शिष्य लोगों ने खूब हंसा। तब उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया, जाओ जाओ इनको कुछ मत बोलो, इनको जगह दे दो रहने के लिए। मैंने कहा सर मैं तो यही कहा था अपने बलबुते पर रहेंगे, आप क्या कहेंगे। पर सर इस तरह से अपमान करना बच्चों को ऐसा अच्छा नहीं है, ठाकुर जी ने इसीलिए आपका अहंकार को विनाश कर दिया। आप एक शिक्षक हो, आप एक प्रधान शिक्षक, आप प्राचार्य हो, आप आचार्य हो, इस तरह से आप अपमान करते हो। अरे हमको ये आपका चुराने आ गए क्या, एक रात रुकर ना आपका खाते हैं ना आपका कुछ भी नष्ट करेंगे, रह जाते। इस प्रकार से वाकई भगवान किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करते, सबका नष्ट कर देते हैं। सो उस रात ही वहां हम बिता करके आ गए, ये सब जीवन का अनुभव हम बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से जब समझा दिया तब इस विप्र को बड़ा अपमान हुआ। तो वो विप्र चुपचाप शांत होकर के जाते, कुछ भी वो समझना चाहता था वो समझ नहीं पाता था, जैसे कुछ भी तर्क देना चाहता था उनकी जिह्वा रुक जाती थी, मानो सरस्वती ने उनकी जिह्वा को बिल्कुल कब्जे में ले लिया और सारे तर्क सारी जुक्तियां सब बंद हो गई, सब बंद हो गई। वो विद्वान इतना, वो सारी बातें चैतन्य भागवत में लिखी गई, गौड़ त्रिहुत दिल्ली काशी आदि करी गुजरात विजयनगर कांचीपुरी अंग वंग त्रैलंग्य उड्र देश आर कत पंडितेर समाज संसारे आछे जत दूषिते दूषी वे अमार वाक्य शेत आंखों को दूरे बुझीते वो कौन जन शक्ति नहीं कारे। उस समय वो पंडित दिग्विजय ये सब जगह घूम चुका था, गौड़ माने बंगाल बांग्लादेश और त्रिहत माने बिहार का एक प्रांत को त्रिहट कहते हैं, दिल्ली तत्कालीन समय भी दिल्ली था नाम दिल्ली, और काशी माने वाराणसी, गुजरात विजयनगर माने आंध्र प्रदेश विजयनगर, कांचीपुरी तमिलनाडु, अंग माने बिहार का एक भाग, अंग बंग बंगाल का एक भाग, तैलंग कोई एक भाग है, तैलंग कोई भाग होगा तैलंग, और उड्र देश माने उड़ीसा, ये सब जगह से उसको प्रमाण पत्र मिल गया था। सोचो कितने बड़े पंडित थे। तब उनको बड़ा दुख होता है, वो दिग्विजयी इस प्रकार रात्रि को जाकर विचार करता है। रात्रि को उसने सरस्वती जी का आवाहन किया, सरस्वती जी का जब आवाहन किया उस समय सरस्वती उनके स्वप्न में आए। सरस्वती माता ने कहा सुनो ये जो जिनके साथ तुम्हारा तर्क वितर्क हुआ ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं उनकी दासी हूं। रंभा ये रमा सरस्वती और ब्रह्माणी ये सब हम उनकी दासियां हैं, इंद्र चंद्र वरुण ये सब उनके दास हैं। और हे पंडित मेरा मंत्र जप करके वाद विवाद करना ये विद्या का परिणाम नहीं है, ये अच्छा नहीं है, जाओ उस प्रभु से क्षमा की याचना करो। तो दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही वो दिग्विजय पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। एतक छाड़िया विप्र सकल जंजाल श्री कृष्ण चरण गिया भजह सकाल दिग्विजय करीब विद्यार कार्य नहे ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे। तो दिग्विजय पंडित जब चैतन्य महाप्रभु के पास आता है, महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, उन्होंने प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा अरे भाई आप पंडित हो ऐसा क्यों करते हो? संध्या काल में जब महाप्रभु ने विदाई दिया था अपमान करके नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी ऐसा होता है, कभी कभी श्लोक याद आता है कभी याद नहीं भी आते हैं, आप चिंता ना करो, आप जाओ काल प्रातः काल आना और इसकी चर्चा हम करेंगे। इस प्रकार जब विचार करके गए तो दूसरे प्रातः काल आए, प्रणाम किया, महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। महाप्रभु ने कहा दिग्विजयी करीब विद्यार कार्य न है ईश्वर भजले से ही विद्या सत्य कहे। अरे प्रभु सारे संसार पर हम विजय प्राप्त करेंगे ये कोई विद्या का फल नहीं है, कृष्ण का भजन करना यही विद्या का परिणाम है, फल है। एतक छाड़िया विप्र सकल जंजाल श्री कृष्ण चरण गिया भज सकाल, जाओ ये सब छोड़ छाड़ करके श्री कृष्ण का भजन करो। सही से विद्यार फल जानी है निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त है। अरे पंडित जी विद्या का फल यही है श्री कृष्ण के चरणों में धन और मन लग जाए, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा महा उपदेश यही कहिलू तुम्हारे सवे विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारे। एतवली महाप्रभु संभाषित हया आलिंगन करी लेने द्विजेर धरिया। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, पाया वैकुंठ नायकर आलिंगन विप्रेर हैल सर्व बंध विमोचन। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उस केशव काश्मीर का आलिंगन किया, आलिंगन मात्र से ही उस दिग्विजय पंडित के संसार बंधन तत्क्षण नष्ट हो गया। आलिंगन मात्र ही विप्रेर हैल सर्वबंध विमोचन। प्रभु बोले विप्र सब दंभ परिहारी भजगिया कृष्ण सर्व भूते दयाकारी। महाप्रभु ने तीन उपदेश किया, हे ब्राह्मण हे पंडित जी एक काम करो, भगवान का भजन करो और थोड़ा प्रावधान रखो, थोड़ा इनसे बचो। बोले किससे? दंभ परिवरी, पाखंड मत करो, दंभ मत करो, भगवान का भजन करो, दंभ ना करो और जीव मात्र के प्रति दया करो। महाप्रभु ने उन्हें तीन उपदेश दिया और कहा यही महातत्व है। नंबर वन दंभ का परिहार करो, भक्ति में दंभ बहुत बाधक तत्व है, जो जैसा है वैसा करे। सवरी वैसे थी, भगवान ने कृपा की, त्रिवक्रा उन पर भगवान ने कृपा करी पर सूर्पणखा पर कृपा नहीं करी। क्यों नहीं कृपा करी? सूर्पणखा विधवा थी, राक्षसनी थी, लेकिन भगवान राम ने जब पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं एक सुंदर युवती हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ और ब्रह्मा ने तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए हमको बनाया है। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ऐसा संयोग विधि रचा विचारी। भगवान राम भी विधाता को देखने लगे, कौन ऐसा विधाता है जो सूर्पणखा को हमारे भाग में लिखा। एकदम कपट कर दिया, एकदम कपट, इसलिए उनकी नाक कटी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उपदेश देते हैं कि दंभ नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे गोकर्ण का उद्धार होता है, धुंधुकारी का उद्धार होता है, आत्मदेव का उद्धार होता है। धुंधुकारी का उद्धार हुआ है, धुंधुली का उद्धार हुआ है, किसने देखा है? धुंधुली कुएं में गिर करके मरी, क्यों? पति के साथ धोखा किया, धोखा नहीं किया, धोखा कर दिया, कपट किया। इसलिए धोखा कभी नहीं करना चाहिए, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अतः महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले विप्र सब दंभ परिहरी, है विप्र है ब्राह्मण, सारे दंभों को हटाओ, सबसे पहले ये धोखा धड़ी कपट को हटाओ, कपट नहीं करना। जो जैसा है, आप गरीब है गरीब रहो, आप पंडित है पंडित के रूप में रहो, नो चिटिंग। दंभ के प्रतीक है बगुला, बगुला टांग उठा करके ऐसा ध्यान करता है मानो बड़े बड़े मुनि भी फेल, लेकिन किसका ध्यान करता है? वो मछली का करता है, कब मछली आएगी और वो हमारा शिकार बनेगी। इसलिए दंभ, भक्ति मार्ग में दंभ नहीं चाहिए। सूर्पणखा मत बनो, सबरी बनो, है ना? सूर्पणखा ये छल कपट। और जितने कपटी आए ब्रज में, भगवान ने कहा जदगत्वा न निवर्तन्ते, मामा जी आए हो तुम्हारा रूप अभी मैं प्रकट करा देता हूं। पूतना आई दंभ, अघासुर दंभ, बकासुर दंभ, ये सारे दाम्भिक आए थे, सब कपट करके आए थे, सबका भंडा फोड़ हुआ, सब खत्म हो गए। इसलिए महाप्रभु ने सबसे पहले कहा दंभ नहीं करना, और कृष्ण का भजन करो, और सभी जीवों के प्रति दया करो। भक्त होकर के यदि दया नहीं करेगा उक्ति भक्ति नहीं टिकेगी। भागवत शास्त्र प्रमाणित करते हैं, यदि ब्राह्मण जीव मात्र पर दया नहीं करता तो उसकी तपस्या ठीक ऐसे बह जाती है जैसे फूटा भांड से पानी बह जाता है। आपके पास खूब पैसा है, आपके सामने गरीब मरता है, और आप हरी हरी भजन करते हैं, कभी फल नहीं मिलने वाला है, इसलिए भजन फल नहीं देता। लोग कहते हैं हम अमेरिका जाएंगे, वहां बढ़िया कोठी बना के भजन करेंगे। हाय रे राम, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा होता तो रूप गोस्वामी ने क्यों नौकरी छोड़ दी? क्यों छोड़ दी? बड़े बड़े राजा अपने नौकरी चाकरी छोड़ करके, वो कैसा पद है, अशेष श्रेणी मंडलपति श्रेणी में सदा तुच्छ वत, सदा तुच्छ वत, हाँ त्यक्त्वा अशेष मंडलपति श्रेणी में सदा तुच्छ वत। अमेरिका जाऊंगा, पेट्रोल डालूंगा, पैसा कमाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, बढ़िया सी ब्याहूंगा। हाय राम, तुम्हारा भजन तुम ही जानो, कोई भजन ऐसा नहीं करता है। ये जड़ जगत का संभार है, ऐसा होता नहीं है मित्रों। इसलिए महाप्रभु कहते हैं एक नंबर सिद्धांत दिए, दंभ छोड़ो, दूसरा कृष्ण भजन करो, और सर्वभूते दया करो, दया करो। कोई कहेगा हम एक हरिनाम प्रचार करते हैं, हमको बहुत सारी बातें याद है। एक बार हम दक्षिण भारत जा रहे थे, हमारे साथ कुछ भक्त लोग थे। दक्षिण भारत ट्रेन बहुत लंबा चलता है, दूसरे दिन तीसरे दिन जाके पहुंचाती है। उस समय फ्लाइट में हमें कोई नहीं लेता था, ट्रेन में हम जो गए जा रहे थे, सो ट्रेन में गए। दक्षिण भारत में जब पहुंचे, एक व्यक्ति आया भिखारी मांगने के लिए। उस समय दो भक्त मुरमुरा खा रहे थे, नमकीन खा रहे थे, और हमारे यहाँ मंदिर के जो पूरी राजभोग लेके गए थे, सो वो भक्त उनको दे दी। ये मेरे प्रकट सामने की बात है। तो उसने क्या किया, वो पूरी को लेकर के ना वो ट्रेन में ऐसे ही फेंका, और फेंक करके बोला वो जो खा रहे वो दो। मुरमुरा जो है ना नमकीन, अकेले साउथ के लोग लगभग नमकीन ही खाते हैं, बोला वो ही दो। तो ये भक्त कहता है, लेकिन उसने दिया नहीं, तो मेरे पास जब आया तो मेरे को जो हिस्सा मिला था नमकीन वाला, तो मेरे हिस्सा मैंने उनको दे दिया। वो बहुत मुस्कुराता हुआ, देखे चल दिया। तो ये दो भक्त हमको कमेंट करते हैं, बड़ा धार्मिक दिखाता है। उल्टा कमेंट करते हैं, अरे मैंने कहा तुमने नहीं दिया हमने दे दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई ना, अरे उसने महाप्रसाद का अपमान कर दिया। क्या महाप्रसाद का अपमान किया ना, पूड़ियां फेंक दी। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं खाई तुमने क्यों नहीं खाई, तुमने नहीं खाई वो ही कैसे खाता, उसको तो मुरमुरा चाहिए था। सो मित्रों, जीवों पर दया करनी चाहिए। हमारे पास अर्थ है प्राणी अर्थ ही धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। जीवन की सार्थकता है दूसरों की भलाई में। आप कितना खाते हो उसमें जितना आनंद है, आप किसी को खिला के देखो कितना आनंद है, ये विशेषता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार। महाप्रभु ने यहां पर तीन उपदेश दिया, दंभ नहीं है, पाखंड नहीं है और हरिनाम का भजन है, जीव मात्र पर दया है। कई कई लोग कहते हैं दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तुम पहनते हो तो तुम दूसरों को नहीं दोगे, ये कैसा भजन तुम्हारा है, कैसे कृष्ण मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या आपने नहीं सुना तुकाराम नामदेव जी की बात, वो गधा जो है वो प्यासा था और शिव जी पर चढ़ाने के लिए जल लेके जा रहे थे और वो गधे को पिले दिए, वहीं पर भगवान शंकर का साक्षात्कार हो गया। ये सारी चीजें अनुभव करने योग्य है। और ब्राह्मण, ये सारी बातें हम तुमको बतला रहे हैं, किसी को मत बताना, बताओगे तो तुम्हारी आयु खत्म हो जाएगी। इसीलिए गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, अपनी भजन की पद्धति अन्यत्र ना बताएं, बताओगे तो तुम्हारी आयु कम होगी, अल्प आयु में मर जाओगे। महाप्रभु ने कहा खत्म हो जाएगी आयु। से सकल किछु ना कहिए जहां प्रति वेदक उह कहिले है परमायु क्षति। आयु कम हो जाएगी, डोंट स्पीक। ये चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत भक्तों के लिए, भक्तों का बड़ा अभिप्राय है कि प्रभु जी चैतन्य चरितामृत करें, कभी समय आएगा तो चैतन्य चरितामृत करेंगे, ये हमारे भक्तों के प्रति है। कह कह बोले भाई मिली सर्वे जने बादी सिंह वाली पदवी दिवताने। जब महाप्रभु ने इस प्रकार उस ब्राह्मण का, उस केशव पंडित का उद्धार किया, महाप्रभु ने कहा देखो ये सब चीजें छोड़ दो पंडित जी, प्रभुर आज्ञा भक्ति विरक्ति विज्ञान शिक्षण विप्रदेय हैला अधिष्ठान। जैसे महाप्रभु ने आलिंगन किया तो उस केशव भट्ट के शरीर में भक्ति विरक्ति और विज्ञान तीनों प्रकट हो गए। विरक्ति माने संसार के प्रति विरक्ति, विज्ञान माने भगवान का अनुभव और भक्ति माने वो भगवान के प्रति अपार आसक्ति। भक्ति विज्ञान और विरक्ति ये तीनों प्रकट हो गए। और उसी समय से उस पंडित जी ने अपने समस्त प्रमाण पत्र को चीर फाड़ करके नदी में फेंक दिया, गंगा आए स्वाहा। और हाथी घोड़े छत्र चामर जो भी धन था सब बांट दिया, कोथा गेलो ब्राह्मण एरा दिग्विजय दंभ तृण हैते अधिक हैला विप्र नम्र। घास के तिनके से भी वो ब्राह्मण दिग्विजय अधिक नम्र हो गया। हाथी घोड़ा दोला धन जते का संभार पात्र सात करिया सर्वस्व अपनार। जितने नवद्वीप के ब्राह्मण थे सब आए, हर किसी को हाथी घोड़े छत्र चामर सब बांट दिया। चली लेना दिग्विजय हैया असंग, ये है महाप्रभु की कृपा। चली लेना दिग्विजय हैया असंग, हे नमत श्री गौरांग सुंदरेर रंग। ये चैतन्य महाप्रभु का रंग है कि वो हर प्रकार ऐसा रंग डालता है जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाता है, संसार का कोई भी रंग नहीं चढ़ता। देखो कितना अभिमान, कितना अहंकार, कितना पाखंड, कितना दंभ, एक पल में महाप्रभु की कृपा से सब समाप्त हो गया। इसको कहेंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जिनके जीवन में वैराग्य आ रहा है, जिनके जीवन में ज्ञान आ रहा है, जिनके जीवन में भगवत साक्षात्कार आ रहा है, उस भक्त को मानना चाहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवतरित हो रही है। और जिनका धन बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, वो मानेगा कि भगवान की कृपा हो रही है, ये भूल जाओ, यही चैतन्य की कृपा है। कहते हैं कि हेनमत गौरांग सुंदर रंग चली लेना दिग्विजय हैया असंग, राज्य पद छाड़ी करे भिक्षुकेर कर्म कली जुगे तार साक्षी श्री दबीर खास, राज्य पद छाड़ी जार अरण्य विलास। दबीर खास माने रूप गोस्वामी, बोले पंडित जी ये दबीर खास को देखो, ये साकर मलिक को देखो, बड़े बड़े मंत्री पद इन्होंने परित्याग किया और यहां वृंदावन में ये चना बेच करके माधुकरी करके जीवन निर्वाह कर रहे। सुबुद्धि राय वहां का मालिक था और मथुरा में बबूल का काठ काट करके वो बेचता था और जो पैसा उसे मिलता था चना खाता था और कुछ पैसा रखता था। बंगाल से साधु आते थे, सरसों तेल खरीद करके मालिश करता था और उनको भात खिलाता था। ये है महाप्रभु के भक्तों का स्वभाव। महाप्रभु और भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट हन गौर भगवान। संसार के प्रति कोई आसक्त होता है उसको देखकर महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। बड़े बड़े राजा छोड़ करके आ गए, भिक्षु के कर्म कली जुगे तार साक्षी श्री दबीर खास, राज्य पद छाड़ी जार अरण्य विलास। जे विभव निमित्त जगते काम्य करे पाइया वो कृष्णदास ता परिहरे, तावत राजादि पद सुख नाई माने भक्ति सुख महिमा जावत नहीं जाने। अरे पंडित जी जब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ता तो संसार के रंग को उनको अच्छा लगने लगता है। एक सखी गई हमारी इधर केसी घाट पे, दूसरी सखी ने कहा अरे सखी केसी घाट पे मत जाना। बोले जाऊंगी तो? बोले जाने से तेरा संसार समाप्त हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है? ना हां मैं जो कहती हूं उसको मानना। किसी घाट पर मत जाना, ना जाऊंगी तो? जाओगे तो जो सांवरिया खड़ा है उसकी तरफ मत देखना, देखूंगी तो? बोला आंखों से आंख मत मिलाना, मिला दूंगी तो फिर तो किसी की नहीं रहेगी, उसी की हो जाएगी। स्मेरा भंगित्रय परिचिताम सांच विस्तीर्ण दृष्टि वंशी नस्ताधर किशलयम उज्ज्वलाम चंद्र किरण। उस जस्नावती रात्रि में यदि वो त्रिभंग ललित युक्त उस ठान को आप देख लोगे सखी, तुम किसी की नहीं होगे। यदि बंधु संग अस्ति रंग, यदि तू पति पुत्र लेकर रंग करना चाहती है तो उधर मत जाना, और उधर चली जाओगी तो किसी की नहीं रहोगी। ये एक विरोध भाव में एक अलंकार का प्रयोग किया गया है। माने इसका अर्थ क्या, नहीं जाना किसी घाट पे? इसका अर्थ है किसी घाट में जाना चाहिए, इसका अर्थ है उस सांवरिया सरकार से आंखें मिलाना चाहिए, इसका अर्थ है उन्हीं का हो जाना चाहिए, संसार का नहीं होना चाहिए, यही भाव है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये सब बहुत कथा है। अतएव ईश्वर भजन वेद कहे ईश्वरेर शुभ दृष्टि बिना किच्छु न है। हेना गौर सुंदर अद्भुत कथन दिग्विजयी जिनिलेन गौरांग सुंदर सुनिलेन यह सब नदिया नगरे लोकेर लोकेर हैल आश्चर्य ज्ञाने। निमाय पंडित हय महाविद्यावान दिग्विजयी हानिया चलिला जार ठाई इतवड़ पंडित आर कोथा सुनी नाई। अरे निमाय पंडित से हमारे निमाय से बड़ा पंडित कौन है? वहां के जितने बूढ़े बूढ़े पंडित थे सबने निमाय को आलिंगन दिया। निमाय अरे तुमने आज हमारे नाक रख ली, नहीं तो हमारे नाक कटने वाली थी। ये नाक कटना माने हमारी इज्जत जाने वाली थी। निमाय जुग जुग जियो जुग जुग जियो हमारा आशीर्वाद आशीर्वाद तुम्हारे। अरे इनको बादी सिंह उपाधि दे देते हैं। दूसरे ने कहा तुम नहीं, ये सब माया से मोहित होते। अरे बादी सिंह क्या, ये सिंह के बाप है, ये स्वयं नरसिंह है, इनको बादी सिंह की उपाधि क्या दोगे? कोई देने की जरूरत है नहीं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उस दिग्विजय को परास्त करके पराभूत करके ऐसी समस्या का समाधान कर दिया। ना तो दिग्विजय को कुछ लगा, ना तो पंडित समाज का कुछ उनके अभिमान में कुछ आंच आई, और महाप्रभु एक भक्त के रूप में ऐसा व्यवहार किया जो संसार के लिए सीखने योग्य है। और शिक्षा यही है कोई भी अहंकार करता है भगवान उसके अहंकार को कभी नहीं रखते। और दिग्विजयी कहां गए, कैसे भजन किए, उसका प्रमाण यहां नहीं है। जैसे फलवाली, फल बेचने वाली कहां गई, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके कोई किसी ने नहीं देखा, ऐसे दिग्विजय पंडित को किसी ने नहीं देखा। कृष्ण प्रेम में वो मतवाले हो गए। जो उनका मद चढ़ा हुआ था वो तो नकली मद था, वो असली मद जब चढ़ता है मित्रों, फिर वो व्यक्ति दुनिया का नहीं होकर के दीन बंधु का हो जाता है। दीन बंधु का दिग्विजयी, दिग्विजयी दीन बंधु के होकर के मतवाले हो गए। और इस चैतन्य महाप्रभु के इस शुभ आविर्भाव दिवस पर यही संदेश दे करके चले गए, देखो अहंकार का क्या परिणाम है, अहंकारी मत बनो, सरल सीधे बनो और भगवान की कृपा भिक्षा सदैव करते रहो। संसार में देवता तो केवल इस काम्य कर्म की संपत्ति धन धान्य के पीछे भागते हैं, पर असली भक्त तो यही है, वही है जो भगवान के कृपा के अतिरिक्त संसार की एक कौड़ी भी नहीं मांगता। त्रिभुवन विभवे हेति, त्रिभुवन विभवे हेतव्यापि अकुंठ स्मृति अजितात्म सुरादिभिः विमर्ज्यात् न चलति पदारविन्दात् लव निमिषार्धम् अपि यः स वैष्णवाग्रह। यदि किसी को कहा जाएगा हम तुमको एक लोक नहीं, भारत का नहीं, तीनों लोक की संपदा देंगे, एक मिनट के लिए तुम हरि नाम छोड़ दो, वैष्णव जो होगा वो नहीं छोड़ेगा। पर हमको पूछा जाएगा कि हम तुम्हें 1,00,000 रुपया देंगे, तुम 5 मिनट के लिए हरि नाम बंद कर दो, हम तो पहले कहेंगे चलो हरि नाम तो बाद में लेंगे, 1,00,000 तो पहले मिल जाए। ये वैष्णवता नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है। त्रिभुवन विभव, एक विभव नहीं, तीनों लोक के वैभव यदि किसी को दिया जाए, जिनकी कामना सुर लोग करते हैं इंद्रचंद्र वरुण, और उस व्यक्ति से कहा जाए एक पल के लिए लव निमिष अर्धम, लव का आधे और निमिष का आधे, जो श्री कृष्ण के पदारविंद की स्मृति नहीं खोता वो वैष्णव है। उसी दशा को दिग्विजय प्राप्त होकर के कृत्य कृत्य हो गए। तो आज के इस शुभ बेला में, शुभ अवसर पर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु हमें भी ये 3 वरदान दो। क्या? हे चैतन्य महाप्रभु, हे पुरंदर मिश्र के पुत्र गौरांग महाप्रभु, आप हम पर कृपा करें, इसे आपके इसे आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम सभी भक्तों को ये आशीर्वाद दीजिए, जो आशीर्वाद आपने केशव काश्मीर को दिया था, प्रभु हमारे में दंभ अहंकार का प्रवेश ना हो पावे, निरंतर कृष्ण भजन करने की शक्ति मिले और जीव मात्र पर दया करने का भाव उत्पन्न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की, नदिया नवद्वीप धाम की जय, जय श्री राधे। आज नवद्वीप में आनंद हो रहा है, थोड़ा आनंद कर लेते हैं। ये पद हैं नदी ने मुक्तिदाता प्रभु, थोड़ा बजाइए हारमोनियम। नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल की, क्या है? जय पुरंदर लाल की, जय सच्ची दुलाल की। जैसे नंद के आनंद भयो, उसी उसी टोन में गाना चाहिए, बाकी जिनको नाचना है नाचिए। नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के, नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के, जय पुरंदर लाल के, जय सचिदु लाल के,
जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के नदियों में आनंद भयो। जब हम कहेंगे नदियों में आनंद भयो आप कहोगे जय पुरंदर लाल के नदियों में आनंद भयो नदियों में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के नदिया में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो। आप क्या गा रहे हैं नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के गाइए नाचिए। अरे आप तो नाचेंगे आप सची माता हो। खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के ताली। बूढ़न को हाथी घोड़ा छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के छोटन को हाँ छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के नदियों में आनंद भयो नदियों में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के आनंद उमंग भयो आनंद उमंग भयो आनंद उमंग भयो जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के नदिया में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो आनंद उमंग भयो आनंद उमंग भयो नदिया में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के आनंद उमंग भयो नदिया में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के जय जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के नदिया में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो नदिया में आनंद भयो जय पुरंदर लाल के जय सचिदू लाल के आनंद उमंग भयो आनंद उमंग भयो हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाइए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन गौर हरे जय सच्चिदानंदन गौर हरे जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन गौर हरे गौर 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 हरे जय सच्चिदानंदन गौर हरे जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन ओ जय सच्चिदानंदन गौर हरे सच्चि मातर प्राण धन गौर हरे युगावतारी गौर हरे हरि बोल हरि बोल बोलिए हरि बोल 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 हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल बोल हरे बोल हरे बोल ताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरि 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 बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप धाम के पुरंदर लाल की जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण।